IIT से अंकल आए थे तो खटाई और कारपेट बिछे होते हैं कि आओ भाई बिजनेस क्लास फ्लाई करो, फाइव स्टार में ठहरो, सब चलता है राइट। पर जब धंधा करते हो ना ये सब नहीं मिलता। जो एवरेज जो किड है इंडिया में जो यहाँ नहीं जा पाता, उसके सपने बड़े नहीं हो पाते, वरना वो भी कुछ कर सकता था। हमें लगता है पिताजी ने जो काम किया है वो तो ऐसी है राइट। पिताजी ने पूरी लाइफ फाइट मारी हो बनाने में, पर बेटा बोलता है मेरे को ये नहीं करना, ये मेरे मतलब का नहीं है राइट। तो आई डोंट एनकरेज सर कल्चर एट ऑल। अब यहाँ के सर बोलोगे, फिर बाहर जाके बोलोगे यार मेरा मैनेजर तो जो नॉर्मली करते हैं राइट, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सर का। धंधे में पैसा तब उठाओ जब स्केल करने के लिए उठा रहे हो, सर्वाइवल के लिए उठाना बंद करो। एंड मैनी स्टार्टअप्स मेक अ बिग मिस्टेक ऑफ फॉलोइंग यू नो व्हाट द कंपटीशन इज डूइंग, उसकी वजह से स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल
इंडिया में ना एक मिथ है कि बड़ी कंपनी ना सिर्फ बड़े शहरों में बन सकती है, छोटे शहरों में नहीं बन सकती। तो अगर तुम्हें यूनिकॉर्न बनाना, हजारों करोड़ की कंपनी बनानी है, तुम्हें बॉम्बे जाना पड़ेगा, बैंगलोर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, एक छोटे शहर में नहीं बनेगी। तो इस एंटरप्रेन्योर ने बोला नहीं, मैं अपने शहर में रहूंगा, अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, अपने भाइयों के साथ रहूंगा, और यहीं पर मैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म की कंपनी बनाऊंगा। आज का एंटरप्रेन्योर है ऑन द पॉडकास्ट ऑफ फिगरिंग आउट, अमित जैन ऑफ कार देखो, जो सबसे न्यू शार्क भी है शार्क टैंक में। तो लर्न अबाउट हिज जर्नी कि उन्होंने अपनी एक सेटल्ड नौकरी छोड़ के अपने भाई के साथ सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करी, और वहां से सर्विसेज देते देते ऑटोमेटिकली कार देखो का आइडिया कैसे आया और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कारदेखो.com, जो आज एक यूनिकॉर्न भी है। लर्न अबाउट हाउ टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न इन अ टियर 2 सिटी, लर्न अबाउट हाउ टू अपस्किल योरसेल्फ, लर्न अबाउट कि यार हम सही लोग कैसे ढूंढें, उन लोगों को ट्रेन कैसे करें, और उसके बाद ऐसा क्या एक फैक्टर है जो हम लोग सब सीख सकते हैं जिससे हमारे चांसेस बड़ी कंपनी बढ़ाने के बढ़ जाते हैं। वॉच दिस एंटायर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट शार्क ऑफ शार्क टैंक इंडिया, अमित जैन द फाउंडर ऑफ कारदेखो.com। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड हर जगह ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए हमें भी उतनी तेजी से ही ग्रो होना पड़ेगा। एंड ग्रो होने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू स्किल सीखनी पड़ती है, खुद को अपस्किल करना पड़ता है। एंड मुझे लगता है कि दो स्किल्स है जो हर इंडियन को सीखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, कि तेजी से जो सोशल मीडिया बढ़ रहा है उसको समझ के हम खुद के प्रोडक्ट सर्विसेज या पर्सनल ब्रांड को कैसे बढ़ाएं। सेकेंड है पर्सनल फाइनेंस, कि हम हमारे पैसे को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे यूज करें कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में बढ़ता ही जाए। तो आज का वीडियो इज ब्रॉट यू बाय यूडमी, एंड यूडमी पे दो कोर्सेज हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे। द अल्टीमेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय जोशुआ जॉर्ज, इट विल टीच यू अबाउट मार्केट रिसर्च, कॉपी राइटिंग, एड्स, ई मेल मार्केटिंग एंड सो मच मोर। इट्स 11 कोर्सेज कंबाइंड इन जस्ट वन। सेकेंड है कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस कोर्स बाय क्रिस हैरन, इट विल टीच यू हाउ टू सेव, प्रोटेक्ट एंड मेक मोर मनी। चिंता मत करो, यू डोंट नीड टू हैव एनी अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंस नॉलेज टू टेक दिस अप। यूडमी के सारे जो कोर्सेज वो प्रैक्टिकल हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं है, तो तुम जो भी सीखोगे डायरेक्ट अपनी लाइफ में और अपने काम में अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम डे वन। सो चेक आउट दीज कोर्सेज यूडमी पे जाकर, द स्पेशल ऑफर्स एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो स्टार्ट योर लर्निंग विद यूडमी टुडे। तो फर्स्ट आप तैयारी करते आईआईटी दिल्ली, आईआईटी में जाने की, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ए डू यू थिंक कि आईआईटी दिल्ली या आईआईटी में जाना है, आईएम में जाना है, कोई बड़े कॉलेज में आज के टाइम पे मैटर करता है?
आईआईटी
कुछ फर्क पड़ता है?
देख आई थिंक आईआईटी आईएम में जाने से एक फर्क पड़ता है कि आपकी जो स्टार्ट होती है वो बेटर हो जाती है।
ओके,
यू आर परसीव्ड एज यू नो द टॉप ऑफ द क्रीम, द क्रीम राइट। एक्चुअली मुझसे लॉन्ग रन में पूछेगा ना तो वो आई डिसएडवांटेजेस है,
डिसएडवांटेजेस
हाँ, मतलब देख मोस्ट ऑफ द आईआईटी आईएम वाले जो लोग होंगे ना एक अच्छी खुशी जॉब में जाएंगे जाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वालिफाई किए हैं और टिपिकली बड़ी कंपनी में लग जाएंगे और इनमें से बहुत छोटा सा परसेंटेज हमारे टाइप का जो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा उसको एक बार अलग रख देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी वीपी सीएक्सओ ऑफ यू नो ऑन अ जॉब, बट नोटिस how much wealth is being created by SMEs, people like you, right? क्योंकि वो वाला रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं बचती उस एजुकेशन के बाद, तो उतने मुश्किल हो जाता है। to a large majority. Of course, there are outliers who have, you know, built all these, you know, startups. So, मुझे लगता है कि IIT IIM की education basically gives you a lot of exposure. मेरा ये भी मानना है कि आप जितने भी पांच लोगों से मिलते हो, उनके average बन जाते हो आप. तो वहाँ पर आपको पांच बहुत अच्छे लोग मिलते हैं around you, right? तो top के लोग मिलते हैं, सबके बड़े सपने होते हैं, तो आप बड़े सपने देखना चालू कर देते हो. अब मैं अगर वैसे सोचूं तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है IIT से, अंकल तो खटाक इन कार्पेट बिछे होते हैं कि आओ भाई बिजनेस क्लास फ्लाई करो, फाइव स्टार में ठहरो, सब चलता है, राइट. पर जब धंधा करते हो ना, ये सब नहीं मिलता. धंधा करने में जैसे मैंने चालू किया खुद का बिजनेस, तो जो ट्रिलॉजी में मिलता, मैं ट्रिलॉजी में था ऑस्टिन बेस्ड कंपनी में, तो वहाँ बिल्कुल ही अलग टाइप का वो होता था. मतलब बिजनेस क्लास फ्लाई कराते थे, फाइव स्टार में ठहरते थे, जब खुद के पैसे से लेने आते हो ना टिकट. और जब स्टार्टअप में आते हो, जब पैसे नहीं होते, तो आप इकोनॉमी में लेते हो, सबसे सस्ता होटल ढूंढते हो लिटरली, राइट. दैट्स हाउ यू चेंज योर माइंडसेट चेंजेस. और उस टाइम पे जब आप एम्प्लॉय होते हो, तो आप बोलते हो यार अब की बार होटल अच्छा नहीं था, राइट. जब खुद का पैसा खर्च कर रहे होते, तो आप सबसे घटे होटल जाकर लेते हो, राइट. आई हैव सीन द स्विच, एंड ह्यूमिलिटी इज ह्यूज when you start your own business.
Yeah.
Learning experience होता है. तो मतलब मुझे लगता है कि coming back to your main question, IIT IIM से एक advantage भी है, तो एक
disadvantage
भी है, right? और मुझे लगता है कि larger advantage है, क्योंकि जो average जो kid है इंडिया में, जो यहाँ नहीं जा पाता, उसके सपने बड़े नहीं हो पाते, वरना वो भी कुछ कर सकता था. तो मेरा बस यही मानना है कि अगर जो बाकी लोग जो इस podcast को सुन रहे हो, अगर कुछ बड़ा सोचेंगे तभी तो बना पाएंगे, राइट. एक बिल्डिंग हमेशा दो बार बनती है, एक बार दिमाग में बनती है, फिर वो रियल में बनती है, राइट. तो अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं बड़ा, तो सपना पूरा कैसे होगा, राइट. आई थिंक दैट एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली आई थिंक आपका जो नेटवर्क बनता है वो भी थोड़ा यू नो अच्छा बन जाता है. तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लो एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हो, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत एक काइंड ऑफ एक है,
हेल्प मिल जाती है,
हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपकी ही यू नो काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी उस दूसरी साइड पे आपको इवैल्यूएट कर रही होती है.
यस,
दे आर काइंड ऑफ लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल. पर ऐसा अगर अच्छा धंधा बना लो, स्केल कर लो, तो उसके बाद कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है रियलिटी. बट उस पर कितने लोग पहुंच पाते हैं, मे बी द परसेंटेज मे बी हायर, बिकॉज दिस साइड यू मे गेट व्हाट यू कॉल बहुत ही अर्ली स्टेज में, आइडिया स्टेज में भी फंडिंग मिल जाती है इस कोहोर्ट में. इसमें थोड़ी फाइट मार के मिलती है. बट इस कोहोर्ट में फिर मैं क्या देखता हूँ, जैसे मैं शार्क टैंक में भी गया था, तो मैंने देखा कि जिनको पहले फंडिंग मिल गई और जिनके प्रोफाइल बड़े सॉलिड हैं, उसमें से कई लोग जो है उन्होंने इनोवेशन ही नहीं करी है. उन्होंने डिग्री विग्री के बेसिस पे ले तो ली, पर धंधा नहीं बनाया, स्पार्क नहीं है. दूसरी साइड के कोहोर्ट में उनके ना फंडिंग है ना कुछ है, पर प्रॉफिटेबली चला रहे हैं. उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, किसी ने इंस्टा पे क्रैक मार लिया है, ऑर्गेनिक फॉलो बना लिए, हर पोस्ट पे हजारों लाइक आते हैं. यहाँ पर बंदा सब फंडिंग लेके बैठा, कुछ नहीं कर पाया, राइट. तो आई थिंक आई हैव सीन दैट हंगर. तो इट्स नॉट लाइक कि IIT में वो हंगर नहीं आ सकती, वो आ सकती है. बट बेस थिंग ये कि हंगर होना जरूरी है, एक सपना होना जरूरी है, हार्डवर्क उसके पीछे करना जरूरी है, एक स्पार्क होना जरूरी है. तो लाइक यू आर अ गुड एग्जाम्पल योर सेल्फ, राइट. तुमने अपना खुद के इतने सारे सब्सक्राइबर बना लिए और कोई डिग्री विग्री नहीं है, एंड यू आर सच अ सक्सेसफुल गाय योर सेल्फ. तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी है. जस्ट दैट कि उनको अपना बस स्किल का अंदाजा नहीं है.
नो दैट्स इट्स वेरी ट्रू. एक्चुअली हम लोग ये बात भी करते हैं, मैं मेरे डैड से मोस्टली टाइम पे ये बात कर रहा था कि है ना 90% लोग तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं होता है कि हम कुछ बड़ा कर पाएंगे. उनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनके आसपास कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता है.
Correct.
कि जिसने बहुत कुछ बड़ा काम कर रखा होता है तो वो सोच नहीं पाता कि यार ये भी पॉसिबल है.
Correct.
उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही होता है कि यार XYZ मंथ की मेरे को बस इतना पैसा आ जाए घर में, दैट्स इट,
नौकरी कर ले,
नौकरी
माइंड सेट ही वो बनता है.
तो इससे ज्यादा बड़ा होता नहीं. सो टेल मी वन थिंग, एक चीज कि IIT में ऐसा क्या कुछ सीखा एक्स्ट्रॉर्डनरी जो आपको लगता है कि यार बाहर की दुनिया को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है?
IIT में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आया जाता है. मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो, आप फोड़ सकते हो लाइफ के अंदर, आपको ऐसी फीलिंग आती है. तो मेरा IIT में पहुंचने का जो तरीका भी इतना बड़ा डिफरेंट है. मतलब मैं 11th का एग्जाम दिया था तो मैं फेल हो गया था, ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूँ. तो मैं ऐसा नहीं था कि यू नो 11th 12th में अच्छे से, 12th में मैंने दिया था फिर, तो मेरा कहीं पर भी नहीं हुआ था, केवल एक होटल मैनेजमेंट में हुआ था मेरा. फाइनली और आई स्टिल रिमेंबर डिस्टिंक्टली, मेरे PET का एग्जाम होता है, उसमें नंबर बता देते हैं. उस टाइम PET होता था राजस्थान में, तो उसमें आप मैंने सब में बी मार्क किया था, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, मेरे 0 आए थे ऑन 300 मैथ्स में.
ओके,
एग्जैक्ट 0, राइट. तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है. सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने, फिर पापा ने मेरे को बॉम्बे ले गए. पापा RBI में थे उस टाइम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में. तो मैं वहाँ जाके पापा के साथ रहा, उनके साथ ही खाना बनाता साथ में, वही पढ़ाते मेरे को, तो पहले मेरा कोर्स पढ़ते फिर मेरे को पढ़ाते, तो उस टाइप का हमारा, तो नी मीन द लॉट टू मी एक्चुअली इज माई आइडल। तो वहाँ फिर मैंने एकदम फोड़ के 8-9 महीने अच्छे से हार्डवर्क किया और फिर मैं आके जेई लिखा दोबारा, तो जेई के अंदर हो गया। अब की बार जो मैं बता रहा था जिसने 0 आया था, 300 में 300 आए फुल ऑन फुल। तो व्हाट आई रियलाइज इज की हार्डवर्क से मैं, नो आई एम नॉट अ वेरी ब्रिलियंट गाय बट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड आई थिंक दैट्स अ डिसिप्लिन आई लर्न वाइल प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंड आई रियलाइज दैट आई कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ आई वर्क हार्ड।
नाउ गो बैक टू योर जर्नी कि IIT के बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर इन US आल्सो,
या या
यू वर डूइंग अ जॉब देयर, तो US में जॉब छोड़ के इंडिया क्यों आए?
तो मैं US गया था, वहाँ पर मैं रहा 1 साल 1.5 साल रफली, वहाँ जाके बिल्कुल मज़ा नहीं आया वहाँ पर,
मज़ा नहीं है
ही, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि यार अपने टाइप की जगह, मैं क्या जॉइंट फैमिली टाइप का बंदा हूँ। वहाँ पर मैं एक इंडियन था, उससे मेरी दोस्ती हो गई, तो मैं जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह इतने पॉपुलर नहीं होते ना, मैं उठा गाड़ी उठाई पहुँच गया उसके घर टिंग टिंग, तो उसने बोला इंडियन NRI था वो, तो उसने कि डिड आई कॉल यू हुआ, मैंने बोला भाई कौन करते हैं कैसे पॉसिबल है, आई कॉन्ट बिलीव इट। तो मुझे लगा यार ये कंट्री ठीक नहीं है, बड़े इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं अपने लिए, वैसे तो ऑफिस में बड़ा मेरा यार ये वो चल रहा है भाई, और यहाँ आके अचानक मेरे को लगा कि यार ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना चाह रहा मैं जहाँ पर इतना इंडिविजुअलिज्म है। आई वांट टू बेसिकली गो वेयर यू आर यू नो द लव एंड अफेक्शन इज ट्रू रियल। मेरे को बहुत मिस हो रहा था वो, तो आई थॉट कि मेरे को इंडिया आना है वापस। फिर हमारे दादा दादी थे तो बहुत सारी मतलब जॉइंट फैमिली रहती थी, आपको कहीं ना कहीं रूट्स आपको पता था, खुशियाँ
अपॉर्चुनिटी रिलेटेड रीजन नहीं था,
अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिल्कुल भी। मैं सेम कंपनी में मूव बैक किया था,
अच्छा
आई नेवर चेंज द कंपनी। ट्रिलॉजी एक्चुअली हायर्ड अस फॉर ओपनिंग अ बैंगलोर ऑफिस,
ओके,
एंड वी कुड हैव स्टेड बैक इफ वी ऑप्टेड टू यू नो स्टे बैक इन यूएस, बट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक टू इंडिया।
ओके, ओह, सो द रीजन वाज इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी लिविंग सोसाइटी, इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे बताओ कि व्हेन यू वेंट बैक टू जयपुर, ओके, वहाँ पे यू डिडंट लुक फॉर जॉब, यू स्टार्टेड योर सॉफ्टवेयर कंपनी IIT कंपनी, तो क्यों ऐसा, लाइक व्हाट वाज द रीजन कि जिससे शिफ्ट हुआ कि यार जॉब छोड़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में कूदते हैं?
तो इसमें पहले ट्रिलॉजी पे जाता हूँ। ट्रिलॉजी में जब मैं था तो मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था तब, तो बेसिकली उस टाइम पे ऑब्वियसली पूरी फैमिली यू नो अपरूट हो जाती है। लकीली यू नो अनुराग इन माय कंपनी बोथ वर कंसिडरेट, तो फर्स्ट वो चला गया था पापा को संभालने, फिर मैं चला गया था, तो लास्ट स्टेजेस में आई एम सो लकी आई कुड स्पेंड लास्ट 9 मंथ विद देम, और यहीं पर बॉम्बे में ही थे हम लोग, हम जो कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पर टाटा वाला टाटा मेमोरियल, तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, वी स्टेइंग हियर ओनली। तो वहाँ से जब पापा की फिर हम लोग यहाँ से पापा को फिर उन्होंने बोल दिया कि नो अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर पापा ने बोला कि बड़ा एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि पापा ने बोला कि आप मेरे को घर मत लेके चल, उन्होंने बोला कुछ दिन बचे हैं आपके, मतलब यू कैन डाई एनी डे टाइप राइट। तो पापा ने बोला मेरे को जयपुर नहीं जाना, बिकॉज यू नो जब मैं जाऊँगा तो हर कोई आंसू आएगा बैठ के साथ में, एंड आई डोंट वांट टू यू नो क्राई माय लास्ट डेज, तो मेरे को वहाँ लेके चल जा। मैंने हनीमून मनाया था कश्मीर, तो वी एक्चुअली वेंट टू कश्मीर एंड बिफोर हिज डिमाइस 7 डे हमने वहाँ पर रहे, फिर उनकी साथ फूलने लगी, तो वी हैड टू देन फ्लाई बैक टू जयपुर, और उसके कुछ दिन में डेथ हो गई। तो मतलब लास्ट स्टेज में भी पापा ने इंस्पिरेशन देके गया मेरे को कि ना हर दिन को एकदम खुशियों की तरह जियो राइट। एंड वहाँ पर हम लोगों ने सारे मतलब TT भी खेला है पापा के लास्ट डेज में, 7 दिन में कश्मीर में, वॉक भी करी है, बैडमिंटन भी खेला है, और पहलगाम जाके नदी में भी नहाए हैं लिटरली राइट। तो ही मेड श्योर एवरी डे वॉज अ सेलिब्रेशन एंड आई हैव सीन यू नो हिम डू दैट ऑल हिज लाइफ। तो वो काइंड ना कि इम्बाइब्ड है कि नहीं, खुशियाँ जो है ना आपस में वो ढूंढ लेते हैं। तो कंपनी यहाँ से चालू नहीं होती, यहाँ से हम लोग इसकी वजह से जयपुर मूव कर जाते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग जयपुर मूव करते हैं क्योंकि अब हमारे यू नो दादा दी हैं, एंड आई पर्सनली थिंक कि लूजिंग ओनली सिंगल सन फॉर देम वाज डिवास्टेटिंग, एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ यू नो नॉट लेट देम गो बैक इनटू दैट यू नो ट्रॉमा ऑफ लूजिंग द सन, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट बीइंग द ग्रैंडसन। और मेरी और दादू की और अनुराग की और दादू की एकदम बनती है बहुत सॉलिड, this kind of love basically gets you back now to Jaipur, and now you are basically not starting IIT company to start with, your father is running, our father used to run a gemstone business,
okay,
where we would buy goods here एंड देन सेल देम इन यूएस मार्केट्स.
ओके, ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग का काम था और मैन्युफैक्चरिंग ना ट्रेडिंग का काम था. तो जब ये पापा की डेथ हुई तो थोड़ा कलेक्शन भी बाकी था, ऑब्वियसली कलेक्शन साइकिल्स होते हैं राइट, क्योंकि आप क्रेडिट पे देते हो माल. तो अगर यू नो ये हो जाता कि संभाल नहीं रहा तो क्रेडिट पे माल बेचे वो आता भी नहीं. तो मी एंड अनुराग फॉर फर्स्ट 6 to 9 months वी एक्चुअली ट्राइड जेन्युइनली टू डू जेमस्टोन बिजनेस.
ओके,
तो हम लोग नहीं यहाँ पर, और हम लोग तो क्या लग रहा था स्टड बॉय हैं, हम IIT के थोड़े क्या
सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले ही हाई
है, बहुत आई राइट. और हमें लगा कि हम तो इस बिजनेस को नहीं, मैं पापा को है ना बहुत ज्ञान भी देता था.
अच्छा,
कि पापा आप, मैं ट्रिलॉजी में था, MNC देखी हुई थी. हाँ, स्केल ये वो टैन टू जो भी करते हो ना आप पूरा ज्ञान देते हो एकदम. मैकिनी कंसल्टेंट टाइप्स वो कर रहा था. ठीक है, फिर मैं जब उनका बिजनेस में यहाँ पहुंचे हम लोग, मैं और
कोई स्पेसिफिक ज्ञान याद है?
अरे बहुत सारे ज्ञान है, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, आपको यहाँ पर एक इसका प्रोक्योरमेंट हेड रखना चाहिए, यहाँ पर इसके ऐसे करके स्केल करिए ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ज्ञान जो कॉर्पोरेट में सीखते हैं.
ठीक है, ओके.
अब रियलिटी है कि मैंने जब ये बिजनेस लिया और पापा बोलते थे मतलब ये भी उस स्केल का नहीं है, ये भी उस स्टेज का नहीं है, नो मेरे समझ में नहीं आता था. तो फिर जब मैं घुसा इस बिजनेस में ना, तब सबसे पहले मेरे लाइज हुआ कि जिनसे मैं खरीदता हूँ वो लोग इंसान तो सारे बहुत अच्छे हैं, बट मेरा इंटेलेक्ट लेवल मैच नहीं कर पा रहा. बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा, इट्स नॉट फन. मतलब जो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन मेरे को करने की आदत है गिवन द पीयर ग्रुप, यू नो वो मैच नहीं हो भाई. पर हम मतलब नेगोशिएटर वो बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ पर आप माल खरीदते तो खूब जबरदस्त नेगोशिएशन होती है, इतने रुपये कैरेट, इतने रुपये कैरेट, और जेमस्टोन यू नो उस पर रख के तुल के और देख देख के आप. तो मैंने सीखा भी वो सब काम, एक्वामरीन, सिट्रेन, ये सब पेरीडॉट, सारे स्टोन्स का काम किया. फिर हम सेमी प्रेशियस में थे, नॉट प्रेशियस स्टोन्स, एमेथिस्ट वगैरह इस टाइप के जितने स्टोन. तो उसके जब मैंने लिया यहाँ से, फिर मैं और अनुराग गए हम लोग इसको, तो खरीदने का एक्सपीरियंस वॉज लाइक हार्ड कोर नेगोशिएशन, यू नो क्वालिटी चेक. फिर इसको US ले जाके जब सैम्पलिंग करके आप बेचते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले तो आप पहले पापा जहाँ ठहरते हैं और सब कुछ समझते हो पूरा रूट क्या है वो. पापा वो ट्रैवल से 10 cities, तो न्यूयॉर्क जाएंगे, LA जाएंगे, SFO जाएंगे, उनके 10 शहर थे ना जहाँ पर वो सारे शहर कवर करते हैं, जहाँ सेल करने के उनके बायर्स हैं. अब आपको उन सबसे मिलना है, तो आपने बेसिकली आप फिर इकोनॉमी क्लास फ्लाई करते हो, अपने पैसों से टिकट खरीद रहे हो, कंपनी की नहीं है राइट, और आपके पास कोई इनकम भी नहीं है अभी, आपकी कोई लग्जरी अफोर्ड कर पाओ, तो आप अपने पैसों से टिकट खरीद इकोनॉमी में जाते हो. फिर वहाँ कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट नहीं, कोई आपके लिए टैक्सी वेट नहीं कर रही. आप एक बस पकड़ते हो, आप एक मेट्रो पकड़ते हो राइट, लिटरली ऐसे जाते हो आप, और आप जाके उस होटल में ठहरते हो जहाँ पापा ठहरते थे. एंड दैट वाज लाइक अ $15 होटल राइट,
पापा $15 होटल
राइट. तो मतलब इमेजिन, मैं सोच भी नहीं पाया कि यू नो पापा को मैं किस कॉन्टेक्स्ट में एडवाइस दे रहा हूँ, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है मतलब रियलिटी में राइट. आई फेल्ट सो बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मतलब मैं क्या बेवकूफ हूँ, मतलब आई हैव टू लिव दैट लाइफ इन द ग्राउंड टू बी एबल टू एडवाइस एट दैट स्टेज. मैं अपनी एक स्टेज देख के बैठा हूँ अपने दिमाग में और उसकी बेसिस पे अपने पापा को एडवाइस दे रहा हूँ. SME को, SME किस चीज़ के थ्रू गुजरता है, वो एक एक रुपया बजाता है, इतना वैल्यू फॉर मनी होता है. बंदा अपना पिज्जा भी नहीं खाएगा बाहर, अपना इन थेपले लेके जाकर लिटरली राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स. तब तक इतना ज्ञान नहीं था कि उनकी लाइफ क्या है, क्योंकि मैं तो एक अलग लाइफ में निकल चुका था, अनुराग के अनुराग भी कॉर्पोरेट लाइफ में था, हम लोगों ने देखी नहीं थी वो लाइफ. तो जब मैं इस लाइफ को 6 महीने लिव किया, फिर ये उठाया, थैला उठाया डेली टांग के आप सैंपल लेके जाते दिखाने, तो कहीं शॉपकीपर हैं जैसे हम लोग जेमस्टोन बेच रहे थे, शॉपकीपर्स को भी बेचते हैं, ऑफिसर्स को भी लोग बिठाते बुलाते, 2-2 घंटे बिठाते हमारे को बाहर, और हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब नहीं होता. तो मैंने रियल लाइफ देखी, साला ये चल क्या रहा है भाई. जो खरीद रहा है बायर वो भी यू नो डिफरेंट टाइप का है, सेम इंटेलेक्ट लेवल मैच तो वहाँ पर भी नहीं हुआ, बट वहाँ पर है ना सेल्स का जो काम होता ना हार्ड कोर, एकदम हमलिंग एक्सपीरियंस होता था. मैं इतनी ह्यूमिलिटी मैंने लाइफ में नहीं सीखी जितनी मैंने उस 6 महीने में सीखी. मैं घुस रहा हूँ दुकान में, लोग ऐसे ऐसे जैसे आपके जैसे जयपुर छोटे शहरों में क्या होता है, शॉल वाले आते हैं. तो शॉल आपका जब कोई बेचता है ना तो आपके वो दरवाजे से आते हैं, आप मम्मी बैठी होती हैं ऐसे बाहर मटर छील रही होती है, बोलती है बेटा नहीं चाहिए जाओ जाओ भैया. मैंने वो एक्सपीरियंस किया खुद के साथ राइट. मैं थैला लेके अंदर घुस रहा हूँ दुकान में, नहीं नहीं बाहर निकलो बाहर निकलो. उसके बाद मैंने कभी किसी शॉल वाले को भगाया नहीं. रियलाइज वो कि होता क्या, हाउ डू यू फील राइट, इट हिट्स यू हार्ड. दैट होल 6 months, 9 months वाज वेरी हम्बलिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अस टू द ग्राउंड. इट वाज गुड दैट वी डिड दैट बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी. आई विल कम टू द कंपनी नाउ. IIT कंपनी जो स्टार्ट करती, यहाँ पर समझ में आ गया था कि यार ये ह्यूमिलिटी और आपको पूरा हवा निकाल दी थी ऐसे मतलब। हाँ। और ये भी समझ में आ गया था, जो भी एडवाइस देते थे पापा को आप गधे थे। कोई एप्लीकेबल ही नहीं थी।
हाँ। तो एक सेकंड, मेरे क्वेश्चन है बिफोर यू गो टू द आईटी वाला पार्ट, क्योंकि ना ये पार्ट बहुत रिलेटेबल है। हर बच्चा सेकंड जनरेशन का अपने माँ बाप को ज्ञान देता है,
करेक्ट,
इसी बात पे विदाउट रियलाइजिंग, बिकॉज हम लोग आज के जमाने की सारी कंपनीज देखते हैं, आज के जमाने की बुक्स पढ़ते हैं और उसके बेसिस बोलते हैं यार
बिल्कुल
हम आपको सिखाएंगे। सो डू यू फील दैट्स अ राइट वे और रॉन्ग वे, क्योंकि हर कोई ज्ञान देता है।
आई थिंक ज्ञान देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग लाइज इन एग्जीक्यूशन। तो इफ यू लिव दैट लाइफ फॉर अ ईयर और टू, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू एब्जॉर्ब दैट ज्ञान इन योर कॉन्टेक्स्ट। टिपिकली हम लोग क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, हमें लगता है यार पिताजी ने जो काम किया है वो तो ऐसी है, राइट। पिताजी ने पूरी लाइफ फाइट मारी हो बनाने में, और बेटा बोलता है मेरे को ये नहीं करना, ये मेरे मतलब का नहीं है, राइट। बट द सेम बेटा कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन द वर्क इफ ही अंडरस्टैंड्स डेप्थ ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट की डेप्थ हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो चाहे कुछ भी हो, राइट। एंड देन यू कैन ब्रिंग अबाउट न्यू डायमेंशन, लाइक यू आर ब्रिंगिंग न्यू डायमेंशन, यू आर क्रिएटिंग अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दिस मीडियम, राइट। तो आपने समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन के नए तरीके आए, पर अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा ना कि वहां पर धंधा कैसे चलता है, तो यहाँ पर उसको यूज नहीं कर पाओगे ठीक से। तो उसका कॉन्टेक्स्ट होना बहुत क्रिटिकल होता है। तो मेरा मानना है कि हर जो बच्चा पिताजी को ज्ञान देता है, पहले पिताजी की लाइफ अनबायस तरीके से बिना कोई ओपिनियन के एक या दो साल लिव करें। और मुझे लगता है कि द वे द ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन विथ सो मच इनोवेशन एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज दिस न्यू जेन हैज बी इनसेन।
इंटरेस्टिंग, लेकिन फर्स्ट थे कि पहले एक साल दो साल देख लो पूरा
with,
समझ
with all
लो,
humility, with all humility, right?
The same way your father's been living, live the same
right
way.
And don't give your opinion, just learn, just observe, just absorb, be a loofa, you know, keep on absorbing.
Interesting. Okay, now go back to your telling ki idhar to gaya
ab IT, ab yahan par gemstone kar liye bhai, to ab aate hain, अब लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो हमें अच्छा क्या आता, हमें कोडिंग आती अच्छी, तो हमने यार आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी खोलते हैं, और ये हमारे गैरेज से चालू होती है। तो वी लिटरली आर सिटिंग इन द गैराज ऑफ द हाउस, और यू नो जो शादी की टेबलें होती है ना, जिसमें लकड़ वाली जो होती है, वो किराए की लेते हैं, उस पर सफ़ेद कपड़ा लगाते हैं, थोड़ी सुंदर देखें, लकड़ ऊपर से बड़े कर दिखते हैं, वो करके अपना दो लैपटॉप होते हैं अपने लिखते हैं, जाके लिंक्डइन अपडेट करते हैं, वी आर बिल्डिंग अ बिलियन डॉलर कंपनी।
ओके,
तो ये नहीं होता था क्यों, कैसे सूझी, क्या हुआ, व्हाट वाज द रीजन, बट डे वन आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर बोथ ऑफ अस वेंट एंड अपडेटेड आवर लिंक्डइन प्रोफाइल, और अभी हम लोग जॉब छोड़ के आए हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। एक जो अच्छे दोस्त थे उन्होंने कॉल किया, भाई मतलब अभी उसी वर्ड्स के साथ, साले मतलब मस्ती वाली ना, पता है कितने जीरो होते हैं
बिलियन डॉलर में,
और एक्चुअली पता नहीं था, गिन के तो बता देता बट ऑफ एंड
ऐसे पता नहीं था,
नहीं पता, राइट। तो लाइक बॉस, तो उसने, बट द पॉइंट वाज दैट समवेयर आई बिलीव इन इट एंड अनुराग बिलीव इन इट एंड वी न्यू वी आर बिल्डिंग इट फॉर। तो आगे की जो जर्नी है ना, इस नंबर से बड़ी चेंज हो रही है बेसिकली। वी स्टार्टेड विद आउटसोर्सिंग बिकॉज वी हैड टू फर्स्ट मेक द बोथ एंड्स मीट, क्योंकि हमारे पास होम लोन की ईएमआई थी, गाड़ी खरीद रखी थी उसकी ईएमआई थी, फिर घर के खर्चे भी चलने, तो प्रैक्टिकली ये समझ में आ गए थे पहले कमाना जरूरी है। तो इस टाइम कोई स्टार्टअप ज्ञान नहीं है, अभी पहले धंधे की बात करते हैं कि घर में पैसा आना चाहिए, वरना घर चलेगा कैसे, राइट। तो दोनों ने फिर आउटसोर्सिंग कंपनी चालू करी, और पहला प्रोजेक्ट आज भी मुझे याद है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, किसी फ्रेंड ने दिया था 50,000 रुपये का, राइट। और वो हमने डिलीवर किया था कोडिंग करके, और 20-21 दिन का प्रोजेक्ट था, बट सैटिस्फैक्शन वाज सो हाई ऑफ डिलीवरिंग योर यू नो फर्स्ट पीस ऑफ कोड, गेटिंग 50,000 फॉर इट, वर्सेस मेरी सैलरी से कहीं ज़्यादा थी ट्रिलॉजी में, वो खुशी उसमें भी नहीं आई थी जो इसमें आई थी, राइट। लोगों ने पागल हो गए, कितना अच्छी फीलिंग थी। देन ऑफकोर्स यू नो वी हैड ग्रेट टर्म्स विद आवर यू नो एक्स बॉसेस, तो अनुराग के एक्स बॉस से काम आया, उसने एक बड़ा चैलेंजिंग सा टास्क था, वो एक 6 महीने से कुछ, वो अनुराग का एक्सपर्टीज है इन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन,
ओके,
और बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड होता है। तो उन्होंने, उसका एक एक्स बॉस था जो कि उसने एक स्टार्टअप करा था, वो एक हॉस्पिटल को कंसल्ट कर रहे थे इन नीदरलैंड्स, वहाँ पर उन्होंने एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी को टाई अप किया हुआ था, और 6 महीने से उनको एक काम करना था, उनका डेमो डेट था एग्जैक्टली 30 डेज लेटर, एंड दे न्यू दे आर नॉट गोना हिट इट विद दैट कंपनी। सो यू नो अनुराग कॉन्टैक्टेड, तो उसने पूछा भाई, और वो लाइक 30 लोग की टीम उनके लिए काम कर रही थी लिटरली। तो नारायण नाम था जिसने हमारे को बड़ा प्रोजेक्ट दिया था पहला, उसका अनुराग का एक्स बॉस, आई टू में था वो। तो ये बंदे ने बोला कि देख अनुराग, देयर इज नो चांस कि तुम्हें कुछ दे पाऊंगा, वी आर ऑलरेडी स्क्रूड विद दैट वेंडर, वी हैव जस्ट 30 डेज लेफ्ट टू डिलीवर अ मॉडल, एंड अनुराग सेठ की गिव मी अ ट्राई, विल डू इट फॉर फ्री एंड इफ यू डिलीवर देन गिव अस वर्क लेटर. तो उसको लगा कि बैड, नॉट अ बैड प्रोपोजिशन, वहां तो यू नो लूज करने वाले रहे. एंड ऑफ कोर्स ही वाज जेनरस एनफ टू से कि वी वोंट डू इट फॉर फ्री, विल पे यू बट वी मे नॉट रिन्यू. द गाय वाज वेरी जेनरस. तो अनुराग वेंट इनटू और उसने पूछा कि नो आपके कितने लोग हैं. हम लोग तो दो ही थे और एक फ्रेशर था हमारे 5,000 रुपए का. तो इंटर्न, तो हमने बोलते 15 लोग हैं, चिंता मत करो. तब तो कोई था नहीं हमारे पास. राइट, तो प्रोजेक्ट आएगा तो ले लेंगे. वॉज अ थॉट, अभी इतनी कॉस्ट कैसे बांध सकते हैं सैलरी वैलरी की, अभी तो प्रोजेक्ट भी नहीं है. तो अनुराग वेंट टू यू नो नीदरलैंड्स. वो वहाँ पर दिन में समझता क्या करना है क्या करना है, और फिर वहाँ पर मेरे को केटी करता और यहाँ पर और वहाँ पर अनुराग और हम एक और जो बंदा था पहला, हम लोग रात भर कोडिंग करते रहते. और हम लोगों ने एक्चुअली 30 दिन में वो लोग डिलीवर नहीं कर पाए, 7 महीने में हमने 30 दिन में डिलीवर कर दिया उससे बेटर वर्जन, वर्किंग वर्जन. दे वेंट क्रेजी, हाउ इज इट पॉसिबल. तो वहाँ पर हमारे को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला विच वॉज अराउंड 15-20 बिल्ड रिसोर्सेज. ये आउटसोर्सिंग मॉडल मैन पावर बिलिंग. अब इसमें बहुत हाई मार्जिन बन रहा है बिकॉज हम लोग को जब हम लोग हायर करने के लिए लोग एक्सपीरियंस लोगों को बुला रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं ऐसा गैरेज सेटअप देख रहे हैं और वहाँ स्टार्टअप का कोई क्रेज होता नहीं था उस जमाने में. स्टार्टअप जब हमने चालू किया स्टार्टअप वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. मैं 7 की बात कर रहा हूँ. राइट, तो लोग आके देखते हैं क्या है, इंटरव्यू भी नहीं देते, बात भी नहीं करते,
निकल लेते ऑफिस के
इंटरव्यू देख के निकल जाते भाई यहाँ तो काम कैसे करेंगे. बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया. फिर हमें समझ में आया कि ये सीनियर लोग तो नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, वहाँ आई टी इंडस्ट्री है भी नहीं है जयपुर में बहुत ज़्यादा जब पहुँचे थे. तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर फ्रेशर्स उठाए, बिल्कुल रॉ टैलेंट फ्रॉम लोकल कॉलेजेस जिनकी जॉब नहीं लगती वो. राइट, तो वो लोग आ गए हमारे पास क्योंकि उनके ऐसे जॉब थी नहीं, या कुछ लोगों के जॉब थी जो 6 महीने या 9 महीने बाद ज्वाइनिंग थी. तो वो लोग आ गए. तो उस टाइप का एक क्राउड हमारा 30 लोग का 20 लोग का बैच बनाया.
ठीक है,
एंड वी पर्सनली ट्रेन, मी एंड अनुराग पर्सनली ट्रेन ईच वन. अभी जो बिलिंग हो रही थी वहां पर तो वो हो रही थी यूरो में और हमारी जो सैलरीज थी वो थी इंटर्न्स की. राइट, 10,000 रुपये 5,000 रुपये लिटरली सैलरीज पे हमने अपना पहला बैच बनाया था और ये लोग को बना दिया था फटाफट ट्रक्ट. तो थिंकर्स हम हो गए, एग्जीक्यूटर्स हो गए, एंड इट्स अ ग्रेट टीम. मतलब ना दिन रात लगे रहते थे, ऑफिस में सो जाते थे, वहीं ब्रश कर लेते थे. तो उस टाइप का माहौल चलता था पूरे टाइम. राइट, तो यहाँ से जो लर्निंग थी मेरी वो ये थी कि आई हैव सीन वेरी ऑर्डनरी पीपल बिकम एक्स्ट्राऑर्डनरी इन लाइफ. जो फर्स्ट बैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, जिनको हमने 5,000-10,000 पे ज्वाइन किया, दे आर द टेक्नोलॉजी हेड CTOs ऑफ आवर कंपनी नाउ. They are the girl who was topper of the her batch in coding. She's a marketing head now. मतलब मैंने इस बैच को एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से इवॉल्व करते देखा है. मतलब इट वॉज सो आई वॉज जैब. मैं सोचता था ये ITI ML कर सकते हैं. मैं बोल देता हूँ ITI ML से बेहतर है हमारे ये लोग, बिकॉज दे हैव गॉट एक्सपोज. तो वन थिंग आई बिलीव इज इट्स नॉट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिस, इट्स एक्सपीरियंसिस भैया. हो सकता है कोई जना 10 साल में 3 साल का सीखा हो और कोई हो सकता है 3 में 15 का सीख गया हो, क्योंकि उसकी एक्सपोजर ऐसी हुई है. मेरा मानना है कि जब आप पहली जॉब लो ना तो अपना राइट मैनेजर चूज करो जो आपको सिखा रहा हो, जिसके साथ आप काम करने वाले ना वाला वो आपको इवॉल्व कर देता है. तो इस बैच में जैसे मैं और अनुराग को डायरेक्टली कोच कर रहे थे तो लेवल ऑफ लर्निंग एंड एक्सपोजर वॉज वेरी डिफरेंट.
ट्रू,
तो आप अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो साथ में मिलके, तो आपका नजरिया दायरा उतना खुल जाता है,
सब चेंज होता है.
राइट, तो मेरे को लगता है कि यू बिकम एवरेज ऑफ 5, आई ऑलवेज से नो वर्किंग इज पार्ट ऑफ पीपल देन योरसेल्फ. तो ऑटोमेटिकली आप खुलते जाते हो. राइट, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है. एंड आई हैव, तो मेरे पास यू नो हमारी कंपनी में 15 साल पुराने लोग भी हैं, 14 भी हैं, 13 भी हैं, हर बैच में लोग हैं. एंड इट्स अ स्मॉल सिटी का ये भी फायदा होता है, लोग एक फैमिली सी बन जाती है. कॉल इट गिरनार फैमिली. तो हम लोग यू नो वी यूज द वर्ड फैमिली ऑल द टाइम बिकॉज वी रन इट लाइक यू नो इन कल्चर इज लाइक फैमिली. जो जॉइंट फैमिली सेटअप है मेरा घर पे वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाता है. तो कमिंग बैक टू द जर्नी, आई थिंक यहाँ से हम लोगों ने चालू करते हैं हम लोग अपना एक आउटसोर्सिंग का धंधा. 1-1.5 साल में समझ में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर धंधा है इसमें $1 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए कितने लोग लाने पड़ेंगे. तो हम सोचते हैं यार कुछ फास्टर करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी चीज़ करते हैं जो गैरेज में बैठ के हो पाए और बहुत सारे लोग तो पहुंचे. तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यू आर फिगरिंग आउट थ्रू इंस्टा, तो आई फिगर्ड आउट SEO इन बैक देन इन द डे. ट्रिलॉजी ऑलरेडी आई फिगर्ड आउट. तो मैंने यार कि यार ये अपने को आता है, डिजिटल करना आता है. अब तो हम लोग बोलते हैं चलो अब क्या धंधे क्या करने हैं, तो जो आपको एक्सपोज हो उसके धंधे कर सकते हो आप.
हाँ.
और आप मैं और अनुराग जाते हैं ऑटो एक्सपो, वहाँ पर गाड़ियाँ देखते हैं, उनके उनके बारे में ढूंढते हैं। उस टाइम लग्जरी कार खरीदना चाह रहे थे, फिर मैं मराए टूल राइट, यहाँ पर हमारा ऑटो एक्सपो में इस चक्कर में हमारा ऑटो एक्सपो का ट्रिप भी पैरेलली चल रहा था।
ओके,
तो वी लर्न दैट व्हाट वी आर सीइंग इन द एक्सपो वी आर नॉट एबल टू फाइंड ऑनलाइन, एंड दैट वाज इन द ट्रिगर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग कि यार ये डिटेल में ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पर मिल रही है एक्सपो में, यहाँ नहीं मिल रही ऑनलाइन। वी पिक्ड अप ऑल द ब्रोशर्स एंड कोडेड अ साइट इन 7 days।
ओके,
तो फटफट फटफट एक टीम बनाई, सारी फ्रेशर्स ही थे हमारे, तो एक साल अभी तो सबको एक साल का एक्सपीरियंस हो गया था, खट 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 कोडिंग मारी बढ़िया वाली। दैट वाज यू नो साइट गॉन लाइव, एंड पहली बार जब साइट लाइव गई थी कि हम लोग वहाँ से आए थे, यूएस से आए थे हम लोग, बता रहा था ना जेम्सन का बिजनेस किया था, वहाँ पर ई डील्स इन्फो और ऐसी करके बड़ी साइट्स हैं, ई समथिंग समथिंग करके बड़ी, तो हम लोगों ने पहली साइट का नाम रखा था ई कार्ड इन्फो।
अच्छा,
कार देखो नहीं था इसका नाम।
ओके, पहले
तो अंग्रेजी टाइप का नाम था, अनुराग ने सजेस्ट किया था, अनुराग बड़े ही यू नो बड़े
पॉइज्ड थे,
बड़ा वर्बोज नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बड़े अच्छे वर्ड जो ढूंढ पाते हैं अपने, तो बड़ी अच्छी इंग्लिश की बड़े अच्छे वर्ड बोलेगा वो, बड़े इतना कॉम्प्लेक्स बोलेगा कि मैं ही नहीं समझ पाता यार क्या बोल रहा भाई। तो फिर एक जने ने हमारे को अजय करके बंदा है, वो अपना भी CTO है न्यू ऑटो का, तो उसने बोला, उस जमाने में बच्चा ही था वो, तो उसने बोला कि भाई ये तो क्या घटिया था नाम है, बट दिस स्टेटमेंट इज वेन यू नो द गाय इज जस्ट अर्निंग 10K, बट द कैंडर वॉज देयर, इट वॉज अ टीम नॉट बिल्ट आउट ऑफ फियर, इट वॉज अ टीम बिल्ट आउट ऑफ करेज, एंड ईच वन गुड क्वेश्चन ईच वन, एंड दैट्स व्हाट मे बी पॉइंट आउट हियर द लर्निंग, कि आप अपनी टीम में ऐसी कल्चर बनाते हो ना जिसमें आपने जो डिसाइड किया उसको भी बोल पाए बॉस ये ठीक नहीं लग रहा यार, और हमारे को कोई सर नहीं बोलता था, हमने कल्चर बनाई थी हमें अनुराग बोलना, क्योंकि जब आए तो सब सर बोलते थे, तो हमने क्या किया एक वो रख दिया एक यू नो गुल्लक, कि जो भी सर बोले हम 10 रुपये डलवा लेते थे और रियल में डलवा लेते थे।
ओके, नाइस।
तो लोग डालते गए, तो लोगों ने बोला आप बोल रहे हम बोल ही नहीं पाएंगे हमें अनुराग आपको, मैं डलवाता रहा पैसे, एक हफ्ते बाद इतनी इकट्ठी हो गई हमारे पास कि हम लोगों ने पूरी समोसा पार्टी और मूवी पार्टी कर दी उस पैसे, इनको समझ में आ गया कि भाई ये तो डूबते रहेंगे, फिर से बंद हो गया। तो एवरीबॉडी, तो आई डोंट एनकरेज सर कल्चर एट ऑल, एंड देयर इज अ रीजन टू, डीप रीजन, जब मैं उससे पिछली कंपनी में था ट्रिलॉजी, तो हमारे भी यू नो होते थे कि यू नो हायरार्की होती है, कोई सर होता है, एंड आई गॉट अ चांस इन अ कंपनी टू प्ले अ रोल वेयर आई कुड यू नो बिकम माय मैनेजर्स मैनेजर इन अ वे इन अ डॉटर रिलेशनशिप राइट। तो मैं प्रोडक्ट हेड बन गया था, एक मैं चला रहा था, तो मेरे को एक टेक टीम मिल गई, उसका उसी के अंदर मैं रिपोर्ट करता था पहले राइट। तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि यू नो सर इज समथिंग दैट बेसिकली सेट्स एट माइंडसेट ऑफ यू नो अप डाउन
हायरार्की,
एंड आई थिंक दैट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी मेरिटोक्रेटिक, और उसको अपन लोगों को ट्रीट करना चाहिए कि मैं रिस्पेक्ट देने के 50 तरीके होते हैं, सर मोने पाँव छू लो आपको जो भी करना है राइट, यू नो यू हैव गॉट रिस्पेक्ट कैसे करते शो करते हो एल्डर्स को राइट, तो आपके 50 तरीके होते हैं बाई बींग रिस्पेक्टफुल इन योर बिहेवियर, यू डी नॉट से सर, और यहाँ के सर बोलोगे फिर बाहर जाके बोलोगे यार मेरा मैनेजर तो जो नॉर्मली करते हैं राइट, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सर का राइट। खैर कमिंग बैक हियर, तो हम लोग ने यहाँ पर जब वो बनाया, मैं कहा था ई कार्ड इन्फो से कार देखो आया, तो ही प्रपोज द नेम कार देखो, एंड इट क्लिक्ड यू नो, जब भी कोई गाड़ी जाती है क्या बोलते हो कार देखो कार देखो कार देख राइट, कार देख राइट, तो एनी गुड कार यू से दैट, एंड इट काइंड ऑफ क्लिक्ड, एंड दैट्स व्हेन वी नेम
कार देखो
द वर्ड कॉइन कार देखो।
एक बस अब कार देखो का टुडे व्हाट लाइक टुडे मतलब ओवर द टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम क्या क्या बने, लोग तो आ जाते हैं देखते हैं,
तो हमारा मेजर 2011 में क्या हुआ, वी बिकेम द मार्केट लीडर इन ट्रैफिक,
हाँ लोग बहुत आ रहे हैं,
हाँ दबाके। और हमारे उस टाइम पे भी मतलब उस जमाने में इमेजिन कर 2010-11 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमारा मंथली एड रेवेन्यू 40-50 लाख रुपए होता था गूगल एड्स से, केवल गूगल एड्स से, इतना ट्रैफिक था हमारे पास उस जमाने में। तो कार देखो का जब ट्रैफिक आया तब अचानक से हमारे इनबाउंड इंटरेस्ट आने लग गया फॉर कि आपका CPM रेट क्या है, अब ऑटो कैटेगरी में गूगल ऐड का रेट तो मुझे पता है कि क्या है CPM, बट यहाँ पर मैंने कभी डायरेक्टली माल नहीं भेजाया, तो मेरे को पता ही नहीं वाला, आप बताओ, मैंने बोला आप कितना दोगे, कि मेरे को खुद ही नहीं पता, क्योंकि मेरे ये तो पता था कि गूगल सबसे कम देता है,
यस
इसका बहुत ज़्यादा होगा कितना होगा मेरे को ये नहीं पता था रेंज क्या होती है, तो मेरे को मैंने बोला तू ही बता भाई कितने हैं, तो उसने नहीं आप सोच के बताना, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, कि फिर मैंने बैक कैलकुलेट किया मैथमेटिकली इतनी ऐड आएंगे तो CTR पता थी मेरे को, इतना क्लिक आएंगे, इतने क्लिक पे इतनी लीड बन जाएंगी, तो इतनी गाड़ी बिक जानी चाहिए और एक गाड़ी में इतना खर्चा एक बंदा करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे करके मैंने बैक कैलकुलेट किया और नियरली एक्यूरेट था उस जमाने के लिए. सो देन वी स्टार्टेड गेटिंग यू नो दीस यू नो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज. द फर्स्ट
द कार कंपनीज वुड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड देन गिव यू
राइट एंड द एजेंसीज के थ्रू राउट होकर आता है, तो एजेंसीज वुड एडवर्टाइज ऑन अ प्लेटफॉर्म. दैट वाज स्टार्टिंग पॉइंट.
ओके.
और ये बहुत हाई मार्जिन था क्योंकि अगर आपको 5 लाख रुपए का आर ओ आया या 10 लाख का आर ओ आया तो सारा प्रॉफिट है. क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट जीरो है. राइट. इट वॉज अ वेरी हाई ग्रोथ मार्जिन बिजनेस. राइट. तो एडवर्टीजमेंट वॉज मिंटिंग मनी. द कंपनी वॉज गेटिंग कैश रिच नाउ.
मजा आ रहा था.
बड़ा मजा आ रहा था. और सारे स्टार्टअप हम लोगों ने कभी किसी एक भी साल लॉस फाइल नहीं किया. बिटवीन 7 to 13 एवरी सिंगल ईयर वी फाइल प्रॉफिट्स. राइट. इवन सिको वाज शॉक्ड व्हेन दे केम इन 13 नवंबर दैट दिस इज द ओनली स्टार्टअप दे वर इन्वेस्टिंग इन दैट ईयर व्हिच इज सो प्रॉफिटेबल.
सिकोया.
हाँ, सिकोया केम इन द फर्स्ट राउंड. तो उसकी भी कहानी है. तो अब क्या ये एड रेवेन्यू आने लग रहा है. फिर आप है ना अचानक से बाहर के लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है इंडिया आने का. तो ऑस्ट्रेलिया से carsales.com.au आया इंडिया में. वहाँ से ऑटो ट्रेडर यूएस आया इंडिया में. तो सब लोग आए कि यू नो इंडिया में एसेट्स ढूंढते हैं. सब हमसे मिले कि हमारा ट्रैफिक बहुत होता है. सब हमसे मिले. तो हमारे को इन लोगों से बात करके थोड़ा विजन खुलने लग गया कि इन्होंने क्या बनाया है वहाँ पर. तब तक नहीं बताता फ्रैंकली कि क्या बनाना है,
इतना बड़ा बन सकते हैं, क्या क्या
कुछ भी नहीं बताता. तब तक ये बताता कि हमारी साइड अच्छी चल रही है, खूब ट्रैफिक है, बड़ा एड रेवेन्यू अच्छा था. Then what happened was auto trader luckily called us. They were very interested to you know do a deal. So the guy who was hunting said, "I want you to meet our team in Atlanta. Come over 3 days." So we spent in Atlanta, me and Anurag, 3 days. At that point, that opened the vision. मैंने देखा एक online traffic से पीछे क्या बन सकता है वो देख के आया मैं. पागल हो गया मैंने. यार ये तो मतलब बहुत बड़ा हो गया. वहाँ पर देखा हजारों dealer हैं उनके जो monthly इतना payment कर रहे हैं उनको subscription का. इन लोगों ने फाइनेंसिंग का धंधा बना रखा इतना बड़ा. मैं बोला अभी क्या क्या बना के बैठे हैं इस ऑनलाइन ट्रैफिक पे ये लोग और $8 बिलियन की कंपनी है. तो मैं बोला भाई
ये
वहाँ पे चलो इसको फोड़ते हैं, इसमें डीप जाते हैं, पैसे उठाते हैं. बिकॉज फॉर व्हाट आई सॉ वी नीडेड कैश एंड वी लाइक. इंटरेस्टिंग द फैक्ट ये था कि हमारे पास बिटवीन 2010 से लेके 2012 तक हर साल ऑफर आए.
ओके.
कि ये 2 मिलियन ले लो, ये 1 मिलियन ले लो. उस समय पर ईच एक्साइज होता था. राइट. और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बैंक में होता था तो हम मना ही कर देते थे. पर एक बार को मेरा मन बहुत था 11 में कि यू नो पैसा ले लूँ मैं. क्योंकि न्यूज़पेपर में नाम छपते ना लेता था स्टार्टअप उस टाइम पे जो होता था.
नहीं नहीं चीज़ होती.
तो मेरे को बड़ा किक मिलता. अनुराग ने बोला नहीं यार लेट्स नॉट डू दैट. अगर वो अपने पे भरोसा कर रहा है तो अपन लोग अपने पे भरोसा करते हैं ना और आगे बढ़ते फिर आगे देखेंगे. लकीली वी डिड नॉट डू दैट एंड द डिल्यूशन डिड नॉट हैपन. राइट. इट वुड हैव बीन अ लार्जर डिल्यूशन इन द फर्स्ट राउंड. टिपिकली फाउंडर्स बहुत जल्दी डाइल्यूट कर लेते हैं. मेरा हमेशा एडवाइस ये होता है इन फाउंडर्स को कि धंधे में पैसा तब उठाओ जब स्केल करने के लिए उठा रहे हो. सर्वाइवल के लिए उठाना बंद करो. तब तुम्हारे टर्म्स में मिलेगा भी नहीं और खूब इक्विटी निकल जाएगी. आजकल के फाउंडर्स फर्स्ट राउंड में 25% निकाल देते हैं छोटे छोटे सम्स के लिए. बिल्कुल बेवकूफ़ी है वो. मेरा भी अपने में बिलीव करो. अपने पूरा स्किन इन द गेम डालो. चलाओ उसको अपने जज्बे से और फिर राइट रेज करो. तो हम लोगों ने रेज ही नहीं किया. तो दैट इन अ वे हैज वर्क्ड वेल बिकॉज वी स्टिल होल्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी. मोस्ट ऑफ फाउंडर्स मेनी लाइक 90% फाउंडर्स वुड नॉट होल्ड द काइंड ऑफ इक्विटी मी एंड अनुराग हैव इन आवर ओन एसेट एट दिस बिलियन डॉलर स्टेज आई मीन. तो अब यहाँ पर जब आप यूएस से लौटे तो आप ये तो क्लियर थे कि आपको पैसा उठाना है. अब वहाँ से भी यू नो डील कट गई थी हमारी. टर्म शीट मिल गई थी हमारे को. साइन नहीं हुई थी बस क्योंकि अभी साइनिंग की फॉर्मेलिटी के लिए कुछ कुछ था. बट द कंपनी वाज अबाउट टू गो पब्लिक एंड देन द गाय हू आई मेट वुड ओकेट द डील चिप पेरी ही रिजाइन.
हो
तो वहाँ पर डील हुई नहीं.
ओके.
और यहाँ पर फिर हमने बोला चलो फिर यू नो लेट्स सर्च फॉर अनदर वन. बैंकर देर कश्यप केसी ही रन्स द रेन मेकर ग्रुप.
ओके.
एक बैंक आई बैंकर है. तो उस टाइम वो इलारा कैपिटल में होता था. तो ही हैड मेट मी. मैंने यार मेरी तो डील कटी हुई है. तू मतलब क्या करे. कहते हैं यार मैं आपको इसे बेटर ऑफर ले आऊँ एक बार तो आप इस पर फीस मत देना मेरे को. अगर मैंने आपको बेटर ऑफर ला के दिया आपने लिया तो ही फीस देना. इस टाइप के पीछे पड़ गया वो. यार ट्राई करने में जाना मैं तो कोई नुकसान नहीं है. लग गया काम पे फ्री में काम कर रहा है. तो द गाय बेसिकली वर्क रियली हार्ड एंड उसने ये जो डील थी बाकी लोगों को हॉट कर लिया था. वी हैड अपार्ट फ्रॉम सिको वी हैड एट ऑफ दोज टाइम और आज की टाइम भी. आई एम नॉट नेमिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस बट जो अच्छे फंड से उनकी टर्म शीट आती थी सबकी, राइट, अपना सबकी टर्म शीट थी कि भाई मैं पैसा डालने लो, एंड इट वॉज अ डिफरेंट टर्म्स काइंड ऑफ अ टर्म शीट. वी रेज $15 million इन द फर्स्ट राउंड. इट वॉज द फर्स्ट एवर दैट ईरा, राइट, कि हमारा स्केल हो चुका था, अब डिल्यूशन कम होता है इसलिए, राइट, और पैसा ज़्यादा आता है सिस्टम में. That's what kind of it
has. Million at a first round, right? Nice.
Typically, लोग करते हैं 100K raise, 500K raise, या ना फिर million, 2 million. हमारा पहला raise था 15 million. उस ज़माने में सोच, 2013 की बात कर रहा
हूँ. 2013 तक तो हमारे पास कोई यूनिकॉर्न नहीं था इंडिया में.
हाँ, राइट. तो शायद मेरा मानना ये कि अच्छा धंधा बनाओ, फंडामेंटल से बनाओ और रेस करो जितना लेट डिले कर सकते हो, अनलेस कि तुम्हारे को लग रहा है कि पैसा वुड बी ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर स्केल एंड स्केल विल बी द मोट. तो फिर जल्दी कर लो. ऑफ कोर्स,
इंटरेस्टिंग.
सो कमिंग बैक, तो ये कार देखो कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स वहां से फिगर आउट होकर फिर हम आगे बनाने चालू किए
ऑटो ट्रेडर से.
ऑटो ट्रेडर से समझे कि यहाँ के फिर हमने डीलर बिजनेस चालू किया, न्यू कार डीलर्स को लीड देने चालू करे, ओईएम्स को लीड देने चालू किए, कॉस्ट पर सेल बिजनेस चालू किया कि ओईएम के साथ डीपली इंटीग्रेट करना चालू किया कि आपको हम लीड देंगे, उसको नर्चर करेंगे, आपके डीलर्स के साथ काम करेंगे, जब तक गाड़ी नहीं बिकेगी हमें पैसे नहीं मिलेंगे. ऑल दोज मॉडल्स स्टार्टेड इवॉल्विंग. Parallelly, we started getting into used car classified. We started working with the used car dealers. उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर packages बना के list जो सीखा था वो करने लग गए. फिर अचानक से फिर then we also acquired, started consolidating the space. We acquired गाड़ी.com from Naspers. We acquired Zigwheels from Times Group.
Oh, interesting.
हम लोग खरीदने लग गए थे, right? And the idea was कि don't let the competition exist. यहाँ तक हम लोग स्ट्रीट फाइटर इधर पहुंचे तो जितने भी फंडेड प्लेयर थे अराउंड उनको उठाना चालू कर दिया, राइट. उल्टा हो गया, मतलब एक स्ट्रीट फाइटर आया एकदम अंडरडॉग और उसने
फंडेड कंपनी को
टैकल किया. एग्जैक्टली, वो चालू हो गया, राइट. तो यहाँ और पर्पस सिंपल था. ईच एक्विजिशन हैड अ पर्पस. ज़िगवील हैड अ ग्रेट कंटेंट एंड दे अ ग्रेट एडिटोरियल व्हिच वी हैड नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट बैक देन. तो वी थॉट कि इनको अपने एसेट की वैल्यू नहीं पता, इनका ट्रैफिक ही बदल देंगे. उठाते ही ऐसी हुआ था, उठाया बदल दिया ट्रैफिक, राइट, लिटरली. तो वही हुआ. फिर गाड़ी में उमंग वॉज अ ग्रेट को फाउंडर ऑफ गाड़ी एंड ही हैड बिल्ट अ, ही हैड स्पेंड लॉट मोर ईयर्स एन अस ऑन यूज कार साइड. आई थॉट यू नो गेटिंग दिस टीम ऑन बोर्ड ऑफ गाड़ी विल बेसिकली एक्सपेडिट द यूज्ड कार प्रोसेस. फिर हम लोग डीलर से मिलते बात करते तो वहाँ देखा हम लोगों ने कि जो डीलर्स हैं इस प्रोसेस में एक बहुत डिसरप्शन आया. अचानक से ओलेक्स आ गया,
ओके,
और उसने पकड़ के बेच दो जा तबाही, इतना पैसा ले आया, इतना सारा
ओलेक्स का टाइम था भाई, एक टाइम पे एड्स लेफ्ट राइट सेंटर,
सब यू रिमेंबर, राइट,
या दैट वाज.
तो मतलब उसने इतना पैसा फूका और हमारा पैक बिकता था उस जमाने में ₹2000 महीने का. यार ये तो रिकवर भी नहीं हो सकते, कहाँ करूँ करूँ खर्चा,
ओलेक्स में बेच दे.
तो वो उसने पैक फ्री निकाल दिया अपना, तो आपको कोई ₹2000 भी क्यों देगा जब उसके पास. तो हमारे को फिर मॉडल शिफ्ट करना पड़ा अपने, उन्होंने क्लासिफाइड के अंदर तो हमने नीचे करी दी प्राइस एंड वी स्टार्टेड एडिंग मोर सर्विसेज टू द प्लेटफॉर्म. वी अंडरस्टूड फ्रॉम डीलर व्हाट फॉर्म ही वांट्स अस टू टेक एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरी फाउंडर मस्ट लर्न. गो टू द मार्केट एंड लर्न व्हाट फॉर्म योर कस्टमर वॉन्ट्स यू टू टेक एंड टेक दैट फॉर्म. तो हमारे को डीलर ने बोला कि यार मेरे को ना फाइनेंस का बड़ा पेन है. उन्होंने क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? उसने कहा कि देख हमारे को ना मेरा एक या दो लोन होता है महीने का ज़्यादा ज़्यादा, जैसे गाड़ी 10 है तो ना तो कोई बैंक मेरे से को पूछता ना आता. अब लोन कराना होता है तो 10-12 दिन लग जाते हैं, उसमें भी केवल 40% लोन हो पाता है क्योंकि बाकी 60% रिजेक्ट हो जाता है. तो इनसाइट ये मिली कि जो बंदा है इसके पास कोई चैनल नहीं है जिससे फाइनेंस हो पाए,
फाइनेंसिंग करने
इसके पास 40% की अप्रूवल रेट है, तो इसलिए मना ही कर देता है जो गाड़ी लोन पे लेने आता है, भाई साहब लोन मतलब कैश कर लो,
यस,
right, because he doesn't want to you know lose a deal for a loan, right, and he blocks the car. uski working aapne lagi hui hai dealer ki 12 din atkane ke baad. dusra usne problem bola ki jab main gaadi bechta hu to meri insurance kya khatam ho chuki hoti hai aur iske andar jab main gaadi bechta hu aur customer ko nayi insurance karane mein 5 se 7 din lagte hain, matlab kyun lagte hain? to usne bola hum insurance company ko request bhejte hain for ek wo inspector bhejte hain, uski report banata hai, fir wo upload hoti hai, approval hota hai, फिर कहीं 7-8 दिन में पॉलिसी बनती है. तो हमें दो प्रॉब्लम समझ में आ गई थी, कोर की डीलर की क्या है,
इंश्योरेंस एंड फाइनेंस.
हाँ, और ओएलएक्स क्योंकि हमारी पिटाई कर ही रहा था उसमें, तो आई थिंक दैट व्हाट इट मेंट वाज कि इनोवेशन स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन यू आर अंडर यू नो
प्रेशर
और क्राइसिस. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेक अ वेरी गुड शेप इन क्राइसिस टाइम्स. जब भी आपके टफ टाइम आएंगे ना, आपके इनोवेशन ऐसे भर के फ्लो करेगी. मान लो कि पैसे बहुत ज्यादा है तो आपकी इनोवेशन कम हो जाएगी.
True.
क्योंकि आप पैसे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे.
यस.
जब आपके पैसे नहीं होंगे ना, आपके इनोवेशन आएंगे. व्हेन आई वाज हियरिंग योर स्टोरी राइट इन द बिगनिंग, जो तूने किया डिमांड वाला, आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज यही सब हमने किया है. ये इसी को इनोवेशन कहते हैं. दैट वाज क्लियर इनोवेशन दैट यू गाइस डिड. सो कमिंग बैक, यहाँ पर आपने इसको फाइनेंस का प्रोडक्ट बनाया. पीछे आपने बैंक लाने चालू किए, बैंक ए बी सी डी सारे टॉप बैंक ले आया. और आपने बोला कि मैं विंडो. अब बैंक से पूछा भाई बैंक्स की भी प्रॉब्लम क्या है, तो बैंक्स ने बोला कि क्या नाम ये छुट पे डीलर के साथ काम नहीं करते. तो मैंने बोला क्यों नहीं करते, कहते कि हम लोग बड़े डीलर्स के साथ काम करते हैं ना, कि ऐसा क्या रीज़न है. उन्होंने बोला कि देखो हमारे क्या होता है कि हमारी जो आरसी है वो ट्रांसफ़र होती है.
Okay.
अब मान लो डीलर ने गाड़ी पे लोन दिलवा दिया और ये जो गाड़ी है ट्रांसफ़र ही नहीं मान लो, तो फिर लोन किसे रिकवर करूंगा? ऐसे तो रिकवर कर ही नहीं सकता. तो एक बड़ा गैप बैंक की साइड समझ में आया. बैंक की क्या प्रॉब्लम? बैंक को प्रॉब्लम है कि अगर आरसी ट्रांसफर नहीं हुई तो लोन रिकवरेबल नहीं है.
यस.
तो इसलिए वो डीलर जो छोटे हैं बहुत, उनको वो लिमिट्स नहीं दे रहे.
ट्रू.
कि आप आरसी आप पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे राइट, तो इसलिए भी रिजेक्शन हो रहा है पीछे. ये इनसाइट समझने के बाद लगा कि यार इसमें फोड़ा जा सकता है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव टू मीट योर कस्टमर्स एट ऑल साइड्स 360 व्यू.
ब्यूटिफुल इनसाइट.
वहाँ से फिर प्रोडक्ट बना हमारा मार्केटिंग मार्केट प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम लोगों ने यूज्ड कार की लेंडिंग प्लेटफॉर्म चालू करी. इस साइड पे बैंक्स लाए बहुत सारे और अलग अलग टाइप के लाए ताकि हर प्रोफाइल का कस्टमर अप्रूव हो. तो हम लोगों ने एक तो और टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन चालू कर दिया.
Yeah.
और जैसे कार की वैल्यूएशन है, उसको लगने में 2-3 दिन लगते थे कोई बेचता था वैल्यूएट करने, क्योंकि बैंक को भी वैल्यू लगानी गाड़ी. तो हमने वो सारी खुद कर दे दी सर्विसेज टेक्नोलॉजी से. तो वी फाउंड अ टेक्नोलॉजी लेवरेज एंड रिड्यूस अ 12 days to 3 days. And we got the approval rate up from 40 to 70.
Oh.
तो मतलब हर
बहुत ही बढ़िया.
Everybody is winning and we gave guarantee to bank if you lose loan value and RC does not get transferred, we'll pay for it.
Oh.
So we took off the risk from them.
Only the RC risk you took.
Only the RC risk, not the credit risk, but RC risk. अगर transfer नहीं हुई RC तो मेरी problem. तो we developed you know semi local network. So we understood the equation and created solution around it.
Nice.
उससे क्या हुआ, लेंडिंग बिजनेस चल हो गया. आज की डेट में हम लोग करते हैं मंथली 550 करोड़ की लेंडिंग. 550 करोड़ अ मंथ राइट.
वाओ.
व्हाट स्टार्टेड एज लोन वन बिकेम 550 करोड़ अ मंथ नाउ राइट.
शिट.
एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग राइट. एंड वी कंट्रोल नाउ 14% ऑफ यूज्ड कार लेंडिंग इन द मार्केट इन द कंट्री राइट दैट लार्ज. तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे करके इवॉल्व होती जाती हैं. और हर कंपनी में से कई बार लोग पूछते हैं कि यार आप तो 15 साल लगाए यूनिकॉर्न बनने. अक्सर मेरे से ये क्वेश्चन आते ही है और मैं बोलता मेरा यूनिकॉर्न बनना ही नहीं है, मेरे को अच्छा धंधा बनाना है और मेरे को हर साल 70% ग्रो करना है. पिछले 10 साल में एक भी साल ऐसा नहीं जिसमें 70% ग्रो नहीं किया. एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ी होती है. एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय अमेज़न. उन्होंने 20 साल
तक कुछ नहीं हुआ.
40% हर साल ग्रो किया. तो 1.4 to 20 कर लो, वो बन गए वो. दैट्स द पावर.
वाओ
राइट. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ह्यूज. तो बिल्ड सस्टेनेबली. एक होता है ना, बहुत तेजी से भागोगे उतनी जल्दी गिर भी जाओगे. सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बनता उसके अंदर. तो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ. फाउंडेशन स्ट्रांग है. ये सेंचुरीज के लिए ग्रुप बन रहा है, कार्डियो ग्रुप.
नाइस. इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन है कि जब मैं कॉलेज जाता था ना, तो मेरे कॉलेज में 4-5 बच्चे थे जिनकी जो बड़ी बड़ी डीलरशिप के उनके पापा दादा सबके डीलरशिप्स थी. एंड दे वर लाइक द रिची रिच ऑफ द कॉलेज. और ऐसा भी नहीं कि मतलब जैगुआर लैंड रोवर वाले, मारुति वाला भी उतनी चौड़ में घूम रहा है जितना जागवा लैंड रोवर घूमता था. प्रॉपर सबका था. देवर सीन एस की भाई ये मतलब खरबपति होंगे. तो मेरा हमेशा मन था कि डीलरशिप खोलो, कि कार डीलरशिप होनी, गाड़ियाँ तो बिकती रहेगी, चलता ही रहेगा, मज़े आता रहेगा. एंड देन लेटर आई गॉट टू नो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई होता, मतलब कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस बहुत हाई होता है कोई भी डीलरशिप अगर तुम्हें खोलनी होती है. तो डू यू थिंक कि इंडिया में आज भी ऐसे बिजनेसेस हैं या डीलरशिप स्पेसिफिकली तो आज खोलना चाहिए प्रॉफिटेबल होता है, जिसके लिए कैपिटल तो में बहुत हैवी, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जिसको बोलते हैं, कि नहीं अब हमें न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को सोचना नहीं चाहिए वो?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देख, दो ईरा रही हैं इंडिया में राइट. एक ईरा थी जब आप बहुत सारा फैक्ट्री लगाते थे, आप कैपिटल डालते थे,
कैपिटल इंटेंसिव,
रिच ही रिच हो पाते थे पहले राइट. जिनके पैसा है वही पैसा खींच पाएंगे. टेक्नोलॉजी और करंट एनवायरमेंट ने क्या एनेबल कर दिया है कि आप भी, अगर आपके पैसा नहीं तो भी आप कर सकते हो. लाइक व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, पॉडकास्ट, यू विल बी अर्निंग लॉट मोर देन डीलर्स. आई कैन गारंटी दैट. रियलिटी इज दैट यहाँ पर जो इनोवेशन है आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर निकाल दिया है, तो यू हैव गॉट प्लेटफॉर्म्स विच कैन एनेबल यू नाउ। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई एक या दूसरा तरीका गलत नहीं है, कहीं कैपिटल लगा के कैपिटल बन रही है उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आप बिना कैपिटल लगाए पॉडकास्ट करके पैसा बना रहे हो वो भी कोई गलत नहीं है, राइट?
True.
तो सही और गलत कुछ नहीं होता, गो फॉर योर पैशन। अगर आपके पैसे लकी हो आप इतने, तो आपको देखना चाहिए कि मैं उस पैसे को फास्टर
कैसे
रिटर्न IRR कैसे निकालूं। डीलरशिप्स टिपिकली एक डीलरशिप को सेटअप करने में 10 से 15 करोड़ मिनिमम लगी जाता है, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल में गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी मार्जिन कम है, जैसे न्यू कार डीलर का मार्जिन बिटवीन 5-7% होता है, राइट, फॉर अ कार, तो जहाँ पर भी सिंगल डिजिट मार्जिन स्ट्रक्चर है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, जैसे इंडिया में अगर आप लेने जाओगे अपनी इन्वेंट्री फंडिंग का लोन, तो 8-10% भी न्यू कार का मिलता है। तो अगर आपने उसको, और आपके फिर रेंटल हैं शोरूम के, मैन पावर फलाना फलाना फलाना, तो आप बहुत वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहे हो, तो इतने फाइन बैलेंस से जब चीज़ें चलती हैं तो उसका स्टॉक का रोटेशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में जा रहे हो जो बहुत एसेट हैवी है और हाई कैपिटल वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको ना रोटेशन पे देखना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल टू यू नो एक्चुअली डिलीवर दैट। इट्स नॉट अबाउट कार्स, इट्स अबाउट एनी बिजनेस। अगर सिंगल डिजिट मार्जिन, अगर आप डबल डिजिट मार्जिन, जैसे D2C ब्रांड होती है फूड की 60% का मार्जिन, चिप के पैकेट हैं 70% बना लो आप इसमें, राइट, उसके अंदर इतना वो नहीं होता, क्योंकि आपके बफर बहुत है एब्जॉर्ब करने के लिए, आप फिर उसके अंदर
डिस्ट्रीब्यूशन में खेल सकते हो, इन्वेंट्री पे खेल सकते हो। ओके, तो लेट्स गो बैक टू योर जर्नी नाउ दैट। ओके, पहला रीज़न था कि Tier 2 में आपका फैमिली था, सब लोग थे उधर ही थे, जयपुर में आपका घर था, तो आपने वहीं से स्टार्ट किया। अब यू हैव रिसोर्सेज, नेटवर्क, कैपिटल, एवरीथिंग, अब Tier 2 में बिजनेस क्यों बना रहे हो? व्हाट डू यू फील कि क्योंकि ना मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स या मैक्सिमम बड़े बिजनेस जितने बने सब Tier 1 में, या तो वो स्टार्ट कहीं से करते हैं फिर शिफ्ट हो जाते हैं Tier 1 में, वो सबका मतलब अपने अपने वो सब अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं, या बॉम्बे होता है, दिल्ली होता है, बैंगलोर होता है, यूजुअली तो तीन ही जगह करते हैं लोग।
आई नो व्हाट यू सेइंग। देखिए, इसके पे ना एक दो रीज़न है। एक तो मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न बड़े शहर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इज क्वाइट अ स्टेटमेंट आई डोंट इवन रिलेट टू। आपका धंधा कहीं से भी बन सकता है, धंधा करना आना चाहिए, टैलेंट जो है अट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपको उसको नर्चर करना आना चाहिए।
तो टैलेंट में प्रॉब्लम नहीं आती Tier 2 में?
आता हूँ उस पर, आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। अब Tier 1 में टैलेंट हायर करके बैठ जाओ, कंपनी आते चलाओ, आपको चलानी आनी चाहिए ना। ऐसे तो आप बोलोगे यार इंडोनेशिया ऑफिस खुला हुआ है, उसके डेवलपर तो यहाँ बैठे ना, वहाँ तो नहीं बैठा रखे ना, वहाँ डेवलपर नहीं है, यहाँ इंडिया से बनती साइड। तो यू कैन हैव पीपल एनी वेयर, यू शुड लर्न हाउ टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। आई थिंक बिगर रीजन फॉर मी इज देर आर टू बिग रीजन वाई आई हैव नेवर मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। आई लव द सिटी, द स्मॉल टाउन लिविंग, नो रैट रेस फीलिंग, ट्रैफिक इज नॉट देयर, आई रीच ऑफिस टू होम इन 5-7 मिनट्स, आई हैव अ क्वालिटी टाइम लेफ्ट फॉर माई किड्स, I love my joint family life. You know, it's so calming. Happiness is full of happiness. और मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी बड़ा इसने रोल प्ले किया है मेरे लाइफ के अंदर फॉर नो द जर्नी आई बीन एबल टू अंडरटेक सो फॉर एंड विथ सो मच हैप्पीनेस। कभी मेरे को ये नहीं लगा कि नो मैं इसमें फंसा हूँ, कि इसकी यूनिफॉर्म 5 साल में बन गई, इसकी तीन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आई बीन एब्सोल्यूटली हैप्पी एंड आई नेवर कंपेयर ट्राइंग टू एंड आई नेवर डू। ना हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करते अपनी कंपनी में, ना हम लोग यू नो बात करते कि इसका क्या हो, हम लोग वी फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स।
सिर्फ कार देखो, किसी और को मत देखो, कुछ मत देखो।
नहीं, हमारा फोकस थोड़ा इंटरनल फोकस है, लोकस। मतलब कुछ लोगों का होता है कि वो कॉम्पिटिशन क्या कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप ये बोलो कि आप कल से बेहतर हो क्या, और हर रोज ही बोल पाओगे क्या आप, तो आप बेहतर होते जाओगे, एक दिन आप उसको ओवरटेक कर लोगे। तो फोकस आपका इंटरनल होना चाहिए, लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल होना चाहिए। And many startups make a big mistake of following you know what the competition is doing, उसकी वजह से strategy बना के काम करते हैं, और मुझे लगता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी। आपको अपने कस्टमर को समझना है और अपने कस्टमर की नीड्स के हिसाब से अपना बेटर वर्जन बनते जाना है।
Got it.
You will get there. So that's what I think I meant when I said that statement. Coming back, I think मेरा एक और बहुत बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि मेट्रोज पे अपन लोग ना पूरा इकोसिस्टम बना के बैठे हैं। तो आप देखो आपके बैंगलोर के ट्रैफिक की हाल, गुड़गांव के ट्रैफिक की हाल, आप देखो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बची है, और आप कितने पैसों में कितना छोटा मकान खरीद पाते हो, क्योंकि आप लोगों ने मेट्रोज को लोड कर दिया, उनकी इतनी वर्थ नहीं है जिसे नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इंडिया के इतने सारे शहरों में, सारे क्राउड को। और ये क्राउड निकला सारे छोटे शहरों से, जयपुर से इतने लोग गए हैं, कोटा से इतने लोग गए हैं टू सो मैनी कॉलेजेस, और वो लोग अब जाके बैंगलोर या यहीं कर रहे हैं। और वो भी वहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अगर मैं छोटे शहर गया तो कोई और कंपनी नहीं होगी, अटक जाऊँगा। राइट अपने को, मैंने ये माना है कि मेरे को ऐसा स्टेप लेना है कि आई वांट टू बेसिकली बिल्ड स्मॉलर टाउन ऑल्सो थ्रू दिस इनिशिएटिव। एंड हमारे होने के चलते आई थिंक एक इकोसिस्टम बिल्ड होने लग रहा है जयपुर में भी। देर आर सो मेनी स्टार्टअप्स हैपनिंग विद इन द इकोसिस्टम एंड सो मेनी हैव एक्चुअली हैपेंड स्टार्टिंग जयपुर एंड देव मूव्ड।
सो यू नो ओवर ऑल योर कॉन्वर्जेशन अभी तक जितने भी हमने बात करी, यू कीप सेइंग टैलेंट को नर्चर करते आना चाहिए, टैलेंट को बनाते आना चाहिए। सो टेल मी, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एवरीबडी। मैं सबको यही प्रॉब्लम है यार, सही बंदा हायर कैसे करें, और बंदे लेके आ गए तो उसके तब करना क्या आगे, राइट? तो टेल मी थ्री पिलर्स जो आपको लगता है कि यार ये तुम्हें करना चाहिए, एक किसी को भी जो ज्वाइन करता है उसके साथ ये तीन चीज़ें नर्चर करने के लिए उसके लिए उसको करना चाहिए तुम्हें टैलेंट।
आई थिंक सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग है ना चाहते हैं कि जो बंदे आए हैं हमारे पास सीखे सिखाए हैं। सब कंपनी की प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस क्या है।
सब चाहते भी ये कि यार भाई सीखा सिखा आदमी आए, मेरी प्रॉब्लम में लग जाए और बढ़ा दे।
आई थिंक वो पहले मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। फर्स्ट प्लेयर तो है कि चेंज, बिकॉज इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट, बस उसको स्किल नहीं किया गया। आई थिंक द स्किलिंग इज मिसिंग, द पॉलिश इज मिसिंग। प्रॉब्लम इज इन द व्हाट इज टॉट इन कॉलेजेस इज नॉट व्हाट यू नीड इन जॉब। देयर इज अ बिग गैप ऑफ एजुकेशन टू स्किल रिक्वायरमेंट इन अ जॉब, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट प्रोबेबली इज द बिगेस्ट मिसिंग लिंक। तो अगर आप जाओगे अच्छे कॉलेज में सबकी नौकरी लग जाएगी, पर आप जितने छोटे शहर में छोटे कॉलेज में जाओगे सब मोस्ट ऑफ द लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो एजुकेशन से नौकरी नहीं मिल रही, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अपने को है ना बेसिकली उसको फंडामेंटली सॉल्व करना पड़ेगा बाय स्किलिंग। अब क्योंकि यू नो एजुकेशन सिस्टम तो इतनी जल्दी मैं चेंज नहीं करवा सकता, बट एज अ कंपनी एंड एवरी कंपनी दैट इज देयर कैन स्टार्ट अ इनिशिएटिव टू हायर ओनली फ्रॉम दिस टीयर थ्री स्मॉलर कॉलेजेस एंड अपस्किल दीज गाइस। ईच वन ऑफ अस हैज गॉट एंट्री लेवल जॉब्स, सेल्स के जॉब हैं, ऑपरेशंस के जॉब हैं, राइट? एंड फॉर दिस वी हैव स्टार्टेड अ इनिशिएटिव कॉल्ड क्रैक्ड।
ओके,
एंड क्रैक्ड इज ओनली डीलिंग इन यू नो एंट्री लेवल अपस्किलिंग। And these, you know, young talent, hungry talent is nurtured. And I've seen itna intentful talent nahi hai yaar. Kyunki iski ki naukri nahi lagi na, isko bahut aage kuch acha karne ki.
Yeah.
He comes, you know, with a vengeance, you know, I want to prove it now.
Yep. Yep.
Aur jo normal hai, jisko aram se lag rahi thi, uski value nahi, wo soch raha hai isko seekh ke agli kya leni hai agle 6 mahine mein. Ye banda us zone mein nahi aaya. Ye banda keh raha hai main aaya hu, mere ko phone aaya. So you need to, you know, have that ecosystem within your own company to start nurturing, and you can have impact India through this. Because, you know, India tabhi bad payega jab hum log itne sare logon ko upskill karke employment de payenge.
So upskilling mein kaun si top 3 aisi skills hain jo bahut important hai?
I think har insaan ke liye entry level pe to kya communication, negotiation, sales, ye teen cheeze to aapko typically chahiye hoti hain किसी भी चीज में, आपको लाइफ के स्पैन में जनरलाइज।
हाउ टू सेल, हाउ टू कम्युनिकेट,
हाउ टू सेल, हाउ टू कम्युनिकेट, आई थिंक ये बेसिक स्किल्स है लाइफ की, राइट? मेरे को लगता है कि वो सबको आनी चाहिए, चाहे आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, अपने प्रमोशन के तब भी आप कुछ सेल ही कर रहे हो अपने आप को इन अवे, राइट? कम्युनिकेट अच्छे से करोगे तभी सेल होएगा, right? तो आई थिंक वो बेसिक स्किल होती है, चाहे हिंदी बोलो, मेरे को इससे नहीं बराबर इंग्लिश आनी चाहिए। आप हिंदी में कन्वर्स करके भी माल बेच सकते हो, रियलिटी है इंडिया। इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, लोकल लैंग्वेज में माल कटता है।
हाँ, कोई भी लैंग्वेज,
हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई मीन व्हेन आई सेड कम्युनिकेशन, आई डिड नॉट मीन इंग्लिश, आई मीन्ट होल्ड एंड कमांड ओवर योर थॉट्स टू कम्युनिकेट ओवर ओवर लैंग्वेज।
कम्युनिकेशन इज अ स्किल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज,
करेक्ट?
तो भाषा और स्किल में, हाँ, कला में बहुत डिफरेंस है।
तो आप समझ गए, राइट? मैं वही कहना चाह रहा था। तो मोटा मोटी आपको ये तो बेसिक स्किल्स होती हैं। दूसरी आई थिंक मैथ्स से लोग बहुत डरते हैं, जो बहुत सारे यू नो
डरता हूँ,
हाँ, एग्जैक्टली, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई मीट, और रियलिटी की अपने जॉब जो अपस्किलिंग में जिसकी जरूरत है वो थोड़ी सी मैथ्स की, प्रैक्टिकल मैथ्स की, नॉट बुकिश मैथ्स की। क्योंकि है ना जो बच्चे का फियर होता है ना वो निकल जाता है। रियलिटी है कि जो अपने टेक्स्ट बुक्स में कॉस साइन थीटा वगैरह सब पढ़ा है ना, काम नहीं आता है यहाँ पर धंधे में। वो कुछ डोमेन्स में आता है ऑफकोर्स, बट हमारे नॉर्मल डोमेन्स में नहीं आता,
नहीं आता।
तो आपको उसका फियर भी निकालना है। तो आपको, मेरे को लगता है मैथ की अपस्किलिंग उतनी क्रिटिकल है। आई थिंक थर्ड अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ एस्टीम। आपने आज तक अपने में भरोसा ही नहीं किया, आपने अभी तक अपना को समझा ही नहीं कुछ, क्योंकि आपने हमेशा यही सुना है कि यार वो राजू का लड़का तो निकल गया, तू यहीं रह गया, राइट? तो रियल प्रॉब्लम है कि यू हैव बीन कंपेयर्ड ऑल योर लाइफ फॉर योर एकेडमिक मार्क्स थ्रू आउट, एंड यू हैव नॉट, यू लॉस्ट दैट एस्टीम इनसाइड, एंड दैट नीड्स टू बी गॉटन बैक। एंड द बिग मैसेज फॉर पेरेंट्स, यू नो, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड स्पेशल, ही जस्ट नीड्स टू फाइंड दैट पैशन एंड द स्किल वेर इट लाइज, एंड ही मे बी अ गुड पॉडकास्टर, ही मे बी अ गुड वीडियो क्रिएटर। रियलिटी है कि जो बड़े टीयर ए कॉलेज में पढ़ के चले भी गए, उससे कहीं ज्यादा आजकल जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हंगरी लोग हैं वो कमा रहे हैं। एटीट्यूड मैटर्स, एटीट्यूड मैटर्स,
ट्रू, दैट इज सो ट्रू। इनफैक्ट मैं अभी शायद कल या परसों हम लोग बना रहे थे कि अभी तक तो जितने पॉडकास्ट पे गेस्ट आए, यू नो, सबका हम लोग बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि सब में एक कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज, तो सब में एक बहुत एक कॉमन एटीट्यूड है, सबका एक एटीट्यूड है कि यार मुझ में दम है बट आई एम नॉट इनफ येट। तो हर किसी को लगता है दैट दे, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन समथिंग रियली वेल इन देयर लाइफ, दे फील दैट दे हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, कॉन्फिडेंस है, बट उनको लगता है कि अभी आई एम नॉट इनफ। सो वो हंगर है, हंग्री है उस चीज़ के लिए कि मुझे और कुछ सीखना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, मेरे को एक लेवल और अपने आप को पुश करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, एंड तभी वो अचीव कर पाते हैं। सो आई थिंक ये द फीलिंग ऑफ जो आपने बोला था ना कि डजेंट मैटर कौन से कॉलेज या कौन से टाउन से आता है, वो जो फीलिंग जब आती है ना कि यार मेरे को अब तो फोड़ के दिखाना है, दैट हंग्री फीलिंग दैट एक्चुअली टेक्स यू टू 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 प्लेसेस। दैट्स
आई थिंक दैट इज अ मेन थिंग यार। अगर मैं भी जब कभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ हंगरी है कि नहीं बंदा, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर फाइटर है कि नहीं, कि स्टार्टअप में ना मोस्टली फेलियर ज़्यादा मिलते हैं, डेली फेलियर और मैनी सक्सेस कम आते हैं।
ओके,
तो हैविंग द करेज टू परसिवर ओवर योर फेलियर्स, दैट इज स्टार्टअप। कभी वो देखा एक पहाड़ी की जैसे कि बहुत स्टीप वो राइज, आगे ऊपर फ्लैट है, मोस्टली लोग ना इस पर चढ़ते चढ़ते,
राइट?
सिमिलरली आई फील स्ट्रांगली फॉर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में क्या है कि हमें लगता है ये फेयर वर्ल्ड है, रियलिटी है कि हम लोग जिनको एजुकेशन मिली हम सबको, वो लोग बैठे हैं इस प्लेन, उस पर थोड़ा स्टीप है ये, थोड़ा ऐसे एक बार ऐसे इमेजिन करिए पहाड़ी का वो है हाइट, फिर एक ऐसे क्लिफ इमेजिन कर, और यहाँ पर बाकी लोग हैं जो पढ़े नहीं है, और हम बोलते हैं फेयर वर्ल्ड, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन नॉर्मलाइजेस द अपॉर्चुनिटी। तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमें लगता है फेयर वर्ल्ड है, हम जेन जी देख रहे हैं हमारे अराउंड ही, वो रियल इंडिया ये है जहाँ 90% लोग 12वीं पास नहीं है, 10% लोग पास है, रियल इंडिया वहाँ है। और अपन लोग जो लोग अकम्प्लिश्ड हैं, अपने को एक काम ही करना चाहिए कि अगर हम लोग 10% लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ना, तो अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं एक 10% को और लेके आऊँगा, ईच वन टीच वन। हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता रहा था कि हमारे ड्राइवर जी की बेटी है, अब वो कुछ 10th में अच्छे मार्क्स लाई, उसको छुड़वा रहे थे वो, तो वो उसने 12th भी करी, एंड ऑफकोर्स ही हेल्प देम फाइनेंशियली, बट द गर्ल वाज सो टैलेंटेड, शी क्रैक्ड इंजीनियरिंग, नाउ शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइफ हैज चेंज्ड सडनली, राइट? इमेजिन इनकम लेवल ऑफ द फैमिली
गोइंग चेंजिंग सिग्निफिकेंटली,
सिग्निफिकेंट लेवल, राइट? एंड दैट्स व्हाट विल चेंज इंडिया, and each one of us will have a role to play in this change,
each one teach one, that's gonna be changing.
Actually mere liye women ka bhi bahut bada role hai yaar, matlab apne par capita hum bolte hain badhani hai, tabhi badh sakti hai jab women apni jo hai population workforce mein aayegi,
participate kare,
aur wo nahi hoega jo ki bahut chota proportion hai abhi, that is when it changes. So women entrepreneurship is very critical. You can be home, but you can still, you know, do the job and contribute to the economy.
Yeah.
You can also employ women to, you know, to do these things. So not only education, I think women empowerment in education also matters a lot.
Yeah.
अपने को अगर सच में भारत को देखना है एक developed country की तरह, तो किसी भी developed country को उठा लो, दोनों population genders equally आ जाते हैं काम पे.
Yeah.
Eventually, right? And that's when it happens.
No, it's true because I was reading a stat ki for every 1,000 men, there are 1,012 women. तो देर आर मोर वुमेन लेस मैन एंड स्टिल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप देखो और बिजनेसेस देखो तो देर आर मोर मैन इन द बिजनेस देन वुमेन इन द बिजनेस. तो दैट अगर वो प्रमोट होगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा.
शार्क टैंक में मैं खुद देख रहा हूँ इतने बढ़िया वेमेन एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, मतलब अब इस सीजन में लास्ट सीजन में भी आए थे. एंड आई थिंक वी नीड टू, मतलब मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं देखता हूँ कि क्या मैं इनके जरिए करोड़ों को इंस्पायर कर पाऊंगा. तो हर जगह पैसा नहीं देखता कि पैसा बनेगा, राइट? कि मेरे को लगता है कि ये रोल मॉडल है फॉर मेनी करोड़ ऑफ पीपल आउट देयर ऑन टेलीविजन. इफ आई एम एबल टू पुट मनी इन देम दिस विल स्पार्क सो मेनी ऑफ देम. तो कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिसमें मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, कुछ ऐसे जहां पर मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा उसके जरिए. एंड आई थिंक दैट्स माय जॉब नाउ. मैं अगर यहां पहुंच गया तो मैं पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहा हूं, लाइफ हो गया.
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी.
तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट.
सो यू टॉक्ड अबाउट शार्क टैंक, टॉक मोर अबाउट इट एंड टेल मी कि व्हाट डू यू लुक एट इन एन एंटरप्रेन्योर बिफोर फंडिंग देम.
आई थिंक
क्योंकि बिजनेस तो अर्ली स्टेज पे ज्यादा सेंस बनाता नहीं, पता भी नहीं चलता तुम्हें कि होना नहीं होना है. इट्स जस्ट द गट फीलिंग ऑफ एन इंडस्ट्री कि यार ये बढ़ेगी, लेकिन बंदे में दम होना चाहिए. तो व्हाट डू यू लुक एट इन द पर्सन?
मैं फाउंडर को देखता हूँ पहले कि यार बंदा जो है ना हंगरी है कि नहीं, और उसके अंदर एक कोई वाइट स्पेस स्पार्क ढूंढता हूँ उसका, कि फाइटर होना दिखना चाहिए कि फाइटर हूँ. और उसके लिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ इसलिए अक्सर. फिर उसको धंधे की कितनी समझ आई है, चलिए छोटा धंधा है उसके नंबर से फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या उसको समझ में आता है कि कैसे उसका डे टू डे धंधा चलता है, कहाँ खर्चे जाते हैं, कहाँ पर वो बनाता है. किसी भी भाषा में समझाते मेरे को, पर इंपॉर्टेंट है उसको डे टू डे धंधा पता होना. तीसरा मैं ढूंढता हूँ यार कस्टमर से कनेक्टेड है कि नहीं. अगर कस्टमर के रिव्यू ही नहीं पड़े, कुछ किए ही नहीं, तो प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता. अच्छा, आपको जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा. मैं एग्जीक्यूशन फोकस ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि इस स्टेज में क्या, अगर एग्जीक्यूशन पर फोकस नहीं है और केवल ज्ञान मिल रहा है तो धंधा नहीं बनेगा. तो एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अर्ली स्टेज. और मतलब आई थिंक एग्जीक्यूशन इज स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट लिटरली, राइट? तो आपको एग्जीक्यूशन करना बहुत क्रिटिकल है. सॉरी, तो मैं वो जरूर ढूंढता हूँ कि आप एग्जीक्यूशन में कितना डीप हो. और फिर मैं देखता हूँ कि एज अ फाउंडर आपका सुपर पावर क्या है.
ओके,
सुपर पावर का मतलब होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाने में बहुत डीप हूँ, रिसर्च में. कहीं एक स्पार्क मिलना चाहिए, उसका प्रूफ पॉइंट कहीं ना कहीं आपको नंबर्स में दिखता है. राइट? अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो क्या कम दिखेगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसकी रिपीट बहुत दिखेंगी मेरे को, राइट? थिंग्स लाइक दोस, राइट? इट स्टार्ट्स हैपनिंग. सो आई स्टार्ट लुकिंग एट दोस नंबर्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ सुपर पावर इनटू द गाय. बाकी तो देखो डेढ़ घंटे ही मिलता है, सवा घंटे ही मिलता है, एक पिच को एक सवा घंटे में करनी पड़ती है. तो आप
पांच लोग पूछ रहे हो,
इतने सारे लोग पूछ रहे होते हैं, राइट? तो इट्स अ क्योस आउट देयर. और आप लोग को काट के केवल 10 मिनट दिखाया जाता है हुआ उसका समरी. तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इतना आप समझ नहीं पाते, बट आपको बंदे का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ समझ में आ जाता है, बंदे की स्पिरिट टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ जाती है. और आई थिंक उसका अगर कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि यू नो इसकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है. कई लोग हैं ना बड़े टफ सर्कमस्टांसिस से निकल के बनाया उन्होंने बहुत लाइफ के अंदर टफ में, तो मैं उन लोगों से बहुत कोरिलेट कर पाता हूँ कि यार मतलब यू नो अगर ये लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सुपर पावर है इनकी टू कम आउट ऑफ दैट एंड बिल्ड दिस इवन इफ इट्स स्मॉल.
परसिवेरेंस इज द सुपर पावर.
मतलब बहुत तगड़ी सुपर पावर होती है परसिवेरेंस, राइट? एंड दैट थिंग आई थिंक भले वो बिजनेस आइडिया बहुत बड़ा ना बन पाए, बट द पीपल आर गोना बेसिकली चेंज द वे इंडिया हैपेंस. दैट्स द इंपैक्ट दे कैन हैव ऑन द कंट्री. सो मेनी विल गेट इंस्पायर्ड.
इंटरेस्टिंग. हुआ कैसे? डू वांट टॉक अबाउट योर जर्नी ऑफ शार्क टैंक? दे कॉल्ड यू, क्या हुआ? लाइक हाउ डिड यू गेट इन?
आई थिंक इसमें सिंपल था, दे कॉल्ड कि भाई इंटरेस्टेड है. शार्क टैंक का सीजन जो है ना पिछले सीजन के बाद बहुत फेमस हो गया इशू. और मैं बड़ा प्राइवेट सा बंदा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे थॉट्स एंड आई वांट टू हैव अ रियल इम्पैक्ट इन द कंट्री. तो मेरे को लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ने से एक अलग लेवल का मैं इम्पैक्ट दे पाऊंगा. जो इतने साल 15 साल सीखा है इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं देते. मैं एंटरप्रेन्योरशिप का खुद बहुत प्रमोटर हूँ, राइट? तो मुझे समझ में आया कि यार फिर मेरा मन किया कि चलो इसमें ऑडिशन देते हैं. तो देर कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन. दे वुड हैव ऑडिशन मेनी अदर फाउंडर्स एज वेल. मेरे को पता नहीं किस किस को किया होगा, बट दे टुक अ 4-hour ऑडिशन, मेड 2 mock pitches हैपन टू मी. तो दे रिकॉर्डेड मी फॉर 4 hours एंड दे डिड नॉट, दे वेंट यू नो साइलेंट फॉर मंथ 1.5 months. फिर उसके बाद यू नो द गाय बिमल द गाय हु यू नो एट देयर ही कॉल्ड यू नो वी हैव ऑडिशन हम एंड we would like to you know move ahead with the Shark Tank. That's awesome. I was very excited with that.
Interesting. Which one's your ड्रीम कार, दिस इज अ क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज़ नाउ दैट योर कार देखो, यू प्रोबब्ली हर कार का अंदर से बाहर तक सब पता है।
लाइक मेरे को ना गाड़ियां बहुत सारी पसंद आती हैं, पर मेरे को ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड गाड़ियां ज्यादा पसंद आती हैं।
ओके,
इसलिए टेस्ला की जो है मेरे को वो बेटर लगती हैं गाड़ियां, बिकॉज द टेक इज लाइक फेयरली एडवांस्ड, एंड आई लकीली गॉट अ चांस टू ड्राइव वन ऑफ देम इन सिंगापुर।
अच्छा, सिंगापुर। ओके,
सिंगापुर में चलाई थी मैंने, अमेजिंग एक्सपीरियंस। डैश, टेक्नोलॉजी, द फीचर्स दे पुट फॉर यू नो ड्राइव, सेल्फ ड्राइव, आई थिंक इट्स अ क्रेजी गुड फीलिंग। मेरे को ना व्हाइल आई यूज्ड टू बी अ इंजन गाय लॉन्ग बैक, आई हैव नाउ स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग टेक्नोलॉजी इन द कार ओवर यू नो, बिकॉज दैट हैज बिकम अ कमोडिटी, एंड दिस ईवी इज नाउ कमिंग इन इनटू अ न्यू रेंज।
या
तो मैं वेट कर रहा हूँ कब लॉन्च होगी इंडिया में।
अभी मेरा एक्सपीरियंस था टेस्ला, मैंने रिसेंटली भी यूएस में चलाई थी, एंड यूएस में फर्स्ट टाइम तो यूएस में ड्राइव कर रहा हूँ, बी वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और टेस्ला में क्या होता है कि आप लेन से बाहर जा रहे हो तो स्क्रीन पे वो लेन पे बता रहा था कि आप लेन से थोड़ा सा बाहर जा रहे हो। अब इंडिया में क्या आपको लेन में चलाने की आदत कम होती है थोड़ी सी,
इंडिया में तो ऑन हो जाने की आदत
कुछ भी नहीं होती, राइट। मैं अगर उसकी थोड़ी लाइन पे भी हूँ ना तो अंदर, और मेरी ये थी मैंने जो रेंट पे ले तो कार, वो जोर जोर से टह 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 रेड रेड रेड, मैं यार ये कौन सी गाड़ी ले ली मैंने, लाइन पे भी अगर मेरा टायर जाता था टेस्ला पूरी कार रेड होती थी, अंदर से बजने लग जाती थी, आई गॉट सो स्केयर्ड। तो पहले आधा घंटा तो मैं थोड़ा डर गया कि मेरे साथ सही तो चल रही है नहीं हो रही है। फिर आई डेंट नो दिस इज वेरी फनी, मैंने इसके अंदर स्टोरीज भी बनाई थी, लोगों ने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पता नहीं था कि बंद कैसे करते हैं गाड़ी, क्योंकि टेस्ला में साइड से वो की होती है वो तो मैं खड़ा हूँ कार के बाहर कि गाड़ी बंद हुई है नहीं हुई है चालू, क्योंकि आवाज़ नहीं करती तो इलेक्ट्रिक, अब ना मुझे खोलना आ रही है ना बंद करने आ रही है क्योंकि साइड में है, मैं चाबी में देख रहा हूँ कहाँ से खुलती है कैसे होता है क्या। So it was very weird. YouTube फिर मैंने actually YouTube किया, फिर YouTube पे जाके देखा तो पता चला कि okay ऐसा होता है, और बंद करनी नहीं होती, मतलब मुझे ये तो पता ही नहीं था।
इसमें तो ऐसा भी मोड है जिसमें आप अपना कुत्ता छोड़ सकते हो डॉग मोड में।
हाँ,
तरह की भी फीचर्स है।
वाइल्ड। अभी इंडिया में कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है आपको जो इंडिया में अवेलेबल है? टेस्ला तो है नहीं,
एक इंडिया में फिर वैसे जाएगा तो आई थिंक आई वुड देन गो फॉर, आई एम थिंकिंग लैम्बोर्गिनी, मैंने खरीदी नहीं ऑल्दो बट आई लाइक लैम्बोर्गिनी उरुस
स्पोर्ट्स,
हाँ तो वो मेरे को अच्छी लगती,
छोटी ऐसे नीचे बैठ के चलाना हो एकदम।
मैंने वो फीलिंग अच्छी लगती है मेरे को, उसकी लुक अच्छी लगती है, स्पीड आई लाइक यू नो फास्टर थिंग्स।
ओके,
मैंने बहुत एक जमाने में बहुत तेज गाड़ी चलाता था, अभी भी अकेला होता तो चला लेता हूँ बहुत, मतलब बड़ा मजा आता है मेरे को रादर वो करने। मैं खुद ड्राइव करता हूँ ई क्लास 350D, राइट, कन्वर्टेबल, तो उसकी खोल के छत फुल वॉल्यूम पे गाना लगा के और हाईवे खाली हाईवे पे पूरी दौड़ाई है, राइट, उसका मजा ही अलग होता है, मतलब पूरे बाल एकदम मीनो
निकल रहे हैं। हां सही है, व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव बॉट और यू ओन राइट नाउ?
व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई हैव बॉट और ओन? तो घर ही होते हैं और क्या होते हैं,
अपार्ट फ्रॉम हाउस
फिर गाड़ियां ही होती हैं।
हाँ।
ये फिर हो सकता है बीवी के हीरे हों।
नाइस, मैं इस पर्टिकुलर चीज से बाहर हूँ भी। नाइस वन, नाइस वन। ओके, सो फ्यू लाइक लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आई हैव बेस्ड ऑन सो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी एंड स्टफ। उससे पहले मैं कोई क्वेश्चन था फैमिली डायनामिक्स में। ओके, तो ना यू हैव बिल्ट अ बिजनेस विद योर ब्रदर, और यूजुअली अभी हम देख रहे हैं, अभी एक मैं स्टैट भी पढ़ रहा था कि इंडिया में फैमिली बिजनेस होते थे बहुत सारे, अब बहुत लोग सेपरेट हो रहे हैं फैमिली बिजनेस से। तो क्या लगता है कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से फैमिली बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रहे?
आई थिंक देख हो क्या रहा है मेरे व्यू में एटलीस्ट, एक कॉन्सेप्ट होता था फैमिली का, और उसके अंदर ना ये नहीं देखा जाता था कि किसने कितना किया है, और जॉइंट फैमिली में सबको बराबर मिल जाता था, राइट। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर क्या सैक्रीफाइस में हैप्पीनेस मिलती थी, देर वॉज अ टाइम वेयर यू वुड यू नो सैक्रीफाइस। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जब पैसे कम होते हैं थोड़े टाइम पहले जाएं, तो आप एक टीवी होता था आपके पास और पूरी परिवार आपको बैठ के एक सीरियल देखता साथ में। अब के कैपिटलिज्म आ रही है धीरे धीरे, तो पैसा आ रहा है तो सब अपने अपने कमरे में टीवी लगा देते हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं, तो अब के आप बिहेवियरली दूर हो रहे हो लोगों से। पहले जाके पैसे नहीं होते थे तो सारी क्या घर की लेडीज या ना सब लोग जाके साथ में खाना बनाएंगे, कोई रोटी बनाएगा, कोई सब्जी बनाएगा, कोई डिशेस करेगा, राइट, जब हेल्प नहीं होती थी। तो हो क्या रहा है कि ये कोविड के नेक्स्ट फेज में मूव कर गया जहाँ इतने हो गए कि ये हेल्प भी अवेलेबल है, ये सब भी अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो विचारधारा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाती है उसके बाद। जब कंस्ट्रेंट होते हैं तो हमेशा बांधते हैं आप, देखना जब अबंडेंस होगी तो हमेशा नो
इंडिविजुअल
इंडिविजुअल करिए आप अबंडेंस में, दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी जो रियल वेल्थ है वो हैप्पीनेस है। जो आप अभी यहाँ कर रहे हो वो आपका बेटा आपके साथ करेगा, बेटी आपके साथ करेगी, रियलिटी है, चक्कर ऑफ लाइफ है। अब यूएस में अगर आप बूढ़े हो जाते हो एज पेरेंट्स तो आपको ओल्ड एज में डाल देते हैं, रियलिटी है लाइफ की, आप क्या कर लोगे। तो आप जो भी आप अभी कर रहे हो उसका वहाँ जो भोगे वही पाओगे, ऐसी है। तो माई व्यू इज़ कि इफ़ यू कैन फॉरगेट ईगोज एंड थिंक ऑफ कलेक्टिव गुड विदाउट थिंकिंग, एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो यू नो फैमिली है, जब आपके कोई घर में क्राइसिस आएगा ना, ये खड़ी होगी। आप बोलोगे मेरा दोस्त है, ये भी खड़ा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, रियलिटी में क्या होगा, तीन महीने में बोलो बैठ जा बैठा जा, कोई नहीं बैठेगा। मेरे फादर की भी डेथ हुई तो मेरे सारे दोस्त आए थे और बहुत प्यार करते हैं ऑब्वियसली, पर मेरे पास 10 दिन बाद जो लोग बचे थे वो यही था परिवार, एंड आई थिंक उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है। और टिपिकली लोग ऐसी चीज़ों की वैल्यू नॉर्मली क्राइसिस टाइम भी कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको अमत आने दो, क्राइसिस को अभी रियलाइज कर लो भाई,
अबंडेंस में उसकी वैल्यू कर लो, क्राइसिस में क्यों
करना। करेक्ट, जिस दिन सबके उड़ जाएंगे वैसे सब आ जाएंगे एक साथ, यू नो साथ में हाथ बटाने के लिए। आई एम सेइंग जस्ट गेट, डोंट लेट दैट गो इन अबंडेंस, एंड इफ यू डोंट लेट दैट गो यू विल बी मोर बॉन्डेड टुगेदर एंड द जर्नी वुड बी हैप्पियर एंड यू विल हैव समबडी टू यू नो हैव योर बैक, यू विल नेवर बी लोनली इन लाइफ।
ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस। नंबर वन, विज गिव मी क्विक 3 लीडरशिप प्रैक्टिसेस विच यू फॉलो इन कार देखो, विच यू फील की कल्चरल के बेसिस पे या लीडरशिप फंडास विच यू हैव और फिलोसफीज विच यू हैव केयर, इसके बेसिस पे कंपनी बनती है।
आई थिंक फर्स्ट इज यू नो ह्यूमिलिटी एंड एम्बिशन टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर अस। इफ यू आर यू नो अगर आप में वो ह्यूमिलिटी नहीं है ना तो हमारी कंपनी आप फिट नहीं हो पाओ। हमें चाहिए कि यू नो आप एक अच्छा इंसान होना पहले जरूरी है, वही अच्छा लीडर बन पाते हैं। तो अगर आप कार देखोगे अंदर पूछोगे तो सब लोग बड़े हम्बल हैं और एम्बिशियस हैं, तो पैर जमीन पे और आंखें आसमान पर है। दैट्स व्हाट इज वेरी क्रिटिकल टू अस।
देयर इज अ रैप लाइन फॉर इट, आई से दिस इन ऑलमोस्ट एवरी रैप, हवाओं में उड़ूंगा मैं पैर रख के जमीन पर।
आई एम सेइंग एग्जैक्टली
द एग्जैक्ट सेम थिंग इज दैट, या
इन अ डिफरेंट वे बट एग्जैक्टली आई मीन दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। सेकेंड होता है वैल्यू सिस्टम। जो वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर बेसिक हाइजीन होना जरूरी है, इंटीग्रिटी, केयर, स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। तो आई एक्चुअली टेक 3-4 आवर्स ऑफ राउंड फॉर एनी सीनियर मैनेजमेंट टू जस्ट डिस्कवर कल्चर फिट, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी जना यू नो ऊपर आया, जो सर्वेंट लीडरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल्चर का मतलब है सर्वेंट लीडरशिप, मतलब गोली लगेगी तो पहले मेरे को लगनी चाहिए, उसके बाद मेरी टीम को। मतलब पैंडमिक हो, सैलरी कट लेनी है तो पहले मैं लूँगा, उसके बाद टीम लेगी और मेरे से कम लेगी, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यू हैव टू यू नो एक्ट लाइक अ रोल मॉडल एग्जाम्पल। मेनी टाइम्स यू नो यू गो इन टू कंसल्टेंसी जॉब्स और बैंकिंग जॉब्स, वेर यू आर यूज टू ऑप्टिमाइज फॉर योरसेल्फ ऑल द टाइम, योर बोनस, योर पे आउट, योर डील, योर कट, योर कमीशन, एंड आई हैव टू रियली चेक वेदर आर नॉट कल्चरली वी डोंट वॉन्ट पीपल आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर देमसेल्फ। एंड जैसे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया है, आई वॉन्ट टू रन इट लाइक अ फैमिली
जॉइंट फैमिली,
एंड वेयर ऑफकोर्स यू नो मेरिटोक्रेटिक है, जो अच्छा नहीं करो जाएगा वो चलता रहेगा, बट फंडामेंटली कल्चरली वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू रियली केयर फॉर योर पीपल। अगर वो केयर नहीं निकल के आएगी ना तो फिर नहीं में नहीं बैठेगा। मतलब वो एम्पैथी, वो केयर बहुत जरूरी है हमारे लिए वैल्यू सिस्टम के अंदर आपके।
इंटरेस्टिंग, नाइस। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विच आई आस्क्ड एवरीबॉडी, लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न बिल्डिंग? वेयर डू यू सी कि इंडिया में अगली अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज यूजुअली वॉच्ड बाय लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? तो उन लोगों को वेयर डू यू फील कि इंडिया में अब अगली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में? क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि हम कुछ करें, हम जहाँ पर है वहाँ से निकलें, किसी नई चीज़ के बारे में पढ़ें, समझें, और फिर एक नया बिजनेस बनाने की कोशिश करें।
हर जगह बनने वाले हैं, बहुत इंडिया बहुत फास्ट बढ़ रहा है, हर हर स्पेस में मिलेंगे आपको। मतलब आप ऐसे सोचो कि इंडिया को 65 साल लगे 65 ईयर्स टू बिकम $1 trillion इकोनॉमी, 2nd trillion आया इंडिया में उसके अगले 12 साल में, 3rd trillion आया 7 साल में, 4th आने वाला है इन 4-5 ईयर्स, राइट। तो ये जो 65 साल का सफ़र 12 साल में हुआ, 5-7 में हुआ, ये इतना इवोल्यूशन। अब हो क्या रहा है कि इंडिया की जो पर कैपिटा भी अराउंड $2100 के आसपास, $2100 को अगर आप रूपी में करो 170,000-180,000 रुपये साल की इनकम है एवरेज अपने पूरे भारतवर्ष में। अब 180,000 के अंदर आप खाना खा सकते हो, अपना रह सकते हो, पानी पी सकते हो, दैट्स ऑल यू कैन डू। इसमें बेसिक एजुकेशन नहीं दे सकते आप दो बच्चों को। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो $2100 ये जाने वाला $3000, और आपको बेर मिनिमम जो चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए और बेसिक उसके लिए 1800 चाहिए होते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम है केवल $300, और ऊपर आप मान लो 1000 और ढूंढने वाला है, $1300 300 से 1300, तो सारा पैसा खर्च कहाँ होगा? ये पैसा खर्च होगा गाड़ियों में, बाइक्स में, आपके महंगे चिप्स में, अच्छे आइसक्रीम में, एवरी इंडस्ट्रीज वाना लाइक यू नो गो क्रेजी। तो रियलिटी इज़ कि एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज़ वेटिंग टू गेट डिसरप्टेड इन टर्म्स ऑफ द डिमांड दैट्स अबाउट टू कम इन नेक्स्ट 5 to 10 years, एंड इट्स जस्ट द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम टू बी इन इंडिया टू ग्रो एनी बिजनेस रादर। तो आप ये मत सोचो कि यूनिकॉर्न क्या बनेगा, तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी धंधा कर लो, अच्छा दिल से काम करो, हार्डवर्क करो, आपको पक्का से पक्का रिटर्न आएगा।
कंज्यूमरिज्म
करेक्ट। अब यूनिकॉर्न क्योंकि आप स्पेसिफिकली पूछे तो जो सेगमेंट है एवरग्रीन जो रहते हैं वो तो हमेशा रहेंगे, फिनटेक है, लेंडिंग बढ़नी है, आज की डेट में जो नया कंज्यूमर आ रहा है वो लोन लेता है, पुराना कंज्यूमर बचाता था फिर सामान खरीदता था, और लेंडिंग क्या सदियों पुराना बिजनेस है, हजारों साल से चला रहा है, ब्याज लेना धर्म है और वो एक्सेप्टेबल है, पीपल मे नॉट पे फॉर कन्वीनियंस, पीपल विल पे फॉर ब्याज। तो फिनटेक के अंदर कुछ करते हो, लेंडिंग बिजनेस बनाते हो तो बढ़िया है, और आप अपनी निश ढूंढ सकते हो, अलग अलग टाइप की लेंडिंग होती है, अलग अलग कोर्ट है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी, मतलब इतने सारे व्हाइट स्पेसेस अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर फॉर दिस। इंश्योरेंस है, इट्स ग्रोइंग क्रेजी, मतलब आप देखोगे लाइफ और हेल्थ की कवरेज ही नहीं है इंडिया में, तो छोटे से पसंद इतने सारे लोग जब इतना कमाएंगे तो अपनी लाइफ हेल्थ भी कवर कराएंगे। लेकिन आप कोई से भी उठाओगे ना इतना जब पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे, आप समझ लो उसमें घुस जाओ, वो होना ही है, बाइक्स भी खरीदेंगी,
बढ़ना ही है, कंज्यूमरिज्म तो बढ़ना ही है। सो जस्ट अ क्विक फॉलो अप क्वेश्चन, कंज्यूमरिज्म बढ़ने वाला है इंडिया में और हर चीज़ में स्कोप बढ़ने वाला है, वेयर डू यू फील इंडिया में मास ब्रांड बनाने में फ़ायदा है, मास प्रीमियम बनाने में कि प्रीमियम बनाने में? क्योंकि इंडिया आज तक सब लोगों ने बोला कि इंडिया में प्रीमियम ब्रांड्स नहीं बनती, इंडिया में मास प्रीमियम ब्रांड्स नहीं बनती, इंडिया में मास ही ब्रांड्स बनती।
नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो कोहोर्ट है, अगर आप देखो 20 लाख रुपये के ऊपर कमाने वाले कितने लोग हैं, अराउंड 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में 20 लाख के ऊपर कमाते हैं इंडिया में। ये कोहोर्ट हो रहा है डबल इन नेक्स्ट 4-5 ईयर, 20 लाख के ऊपर कमाने वाले 3 करोड़ हो जाएंगे, पिछला कोहोर्ट भी बढ़ रहा है, 3-3.5 का कोर्ट है वो 5 हो रहा है 5.5 हो रहा है, राइट। तो रियलिटी के अंदर ये प्रीमियम मास प्रीमियम जो भी बातें कर रहे हैं, आज आप टॉनिक वाटर लेते हो तो शोपेस भी लेते हो आप, उससे ऊपर वाला भी लेते हो, इतने सारे और आ गए अब तो, राइट। चिप्स खरीदते हो आप, आपके 10 रुपये का भी अवेलेबल होता है, आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दूसरा पड़ा हुआ है, राइट। रियलिटी के अंदर एक इंडिया है जो इवॉल्व हो रहा है, वो एक बड़े साइज के लिए इवॉल्व हो रहा है, एक इंडिया है वो वहाँ पहुँच रहा है जहाँ आप पहुँचे हो, एक इंडिया वो है जो आपके पिताजी जहाँ थे, एक इंडिया वो वहाँ पहुँच रहा है। इंडिया इज लाइक अ 10% कोड मूविंग इनटू नेक्स्ट 10%। तो हमें क्या लग रहा है, हम लोग जब बात करते हैं कंज्यूमरिज्म ये सब जो बातें करते हैं, रियलिटी है कि अगर मैं अपने फादर की बात करूँ तो वो तो रिजर्व बैंक में थे, उनके फादर की बात करूँ वो भी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करते थे, और आज मैं अपनी बात करूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मैं एक अलग पर कैपिटा में पहुंच गया हूं। ये जो तीनों जनरेशन है ना, ये किसी किसी कोर्ट में अभी भी चल रही है, और ये कोर्ट सारे इस तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स अ एवोल्यूशन ऑफ इंडिया हैपनिंग। एक जनरेशन थी मेरे दादाजी वाली जो इसलिए काम करती थी क्योंकि खाने के लिए कुछ होना चाहिए, मेरे पापा की जनरेशन ऐसी थी जो काम करती थी, और उसके अंदर है ना दादाजी के टाइम और पापा के टाइम में, कि पापा के टाइम में था कि नौकरी तो अवेलेबल थी, अब थोड़ी बेटर नौकरी मिल जाए, स्टेबल मिल जाए, वो बोलते थे, राइट। यहाँ पर बोलते कुछ भी मिल जाए दादाजी के टाइम में, पापा के टाइम में थे, मेरे टाइम में थे कि यार थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाए। तो आपको जो जो मिलता गया विरासत में ना, आप उसके अराउंड बनाते गए अपनी लाइफ, राइट है ना भाई। अब मेरे बच्चे जो है वो कुछ और सोचेगा, उसको ये सब तो मिल गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल गई, तो उसका मोटिवेटर कुछ और होगा, राइट। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ही विल प्रोबेबली फोकस मोर ऑन कि यू नो मेरा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो रहा है कि नहीं, इज इट अराउंड माई पैशन और नॉट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो उसे मिली गई विरासत में, पर ये विरासत सबको नहीं मिली अभी। तो कोई कोर्ट होगा जो दादी वाला होगा अभी, कोई कोर्ट होगा जो पापा वाला होगा, कोई कोर्ट मेरे वाला होगा और कोई मेरे बच्चे वाला होगा। तो आप समझो कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हर टाइम एक कोर्ट है, तो इतनी अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलने वाली, ये मास यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये कि क्योंकि इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ द इनकम स्केल द डिवाइडेड एंड हाउ इट्स मूविंग फॉरवर्ड इन ईच वन,
देन यू हैव अपॉर्चुनिटी
एवरीवेयर।
इंटरेस्टिंग, मेरे को यार फॉलो अप क्वेश्चन ही आते जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा, सॉरी आई जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू ऐड कि इंडिया की व्हाट हाउ डू यू कैटर टू इंडियन ऑडियंस, मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए ब्रांड कैसे बनाया जाए, इंडियन ऑडियंस के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या है, यू हैव वर्कड विद इंडिया, यू वर्कड विद मासेस, तो ऐसा डिफरेंट क्या है इंडियंस में कि क्या कर सकते हैं ऐसा डिफरेंट, या इंडिया की ऐसी क्या खास बात है या क्या अलग बात है जिसको अगर कोई समझ ले जिस पल्स को तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है बिजनेस बनाने या ब्रांड बनाने।
आई थिंक दो ही चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि ब्रांड बनाने के लिए बेसिक
इंडिया में
इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट कंज्यूमर है बाहर।
हाँ, मतलब इंडिया कस्टमर क्या सोचता है,
मैं आ रहा हूँ उस पर। आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, एक है कि वो बोलता है कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए उसको कम, वैल्यू फॉर मनी। तो कई लोग बोलते हैं मेरे को यार इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया वैल्यू फॉर मनी मार्केट है। जैसे फर्ज करो आपने कि आपकी कौन सी फेवरेट ब्रांड है, जो कपड़े किसकी पहनते हो आप,
ज़ारा
के, है ना, ज़ारा के शोरूम में गए आप, एक शर्ट टंगी है सामने, उस पर लगा है 6,000 रुपये और उसको काट के लिख दिया है 5,000 रुपये, 1,000 का डिस्काउंट है, ठीक है। एक और शर्ट है और आपको दोनों पसंद आने वाली शर्ट, आपको दोनों बेहद बेटर लग रही है, आपसे पूछने लगा कौन सी खरीदोगे आप, फिर एक और शर्ट है जो 10,000 रुपये का टैग लगा हुआ है, उस पर काट के उन्होंने लिख दिया 5,300 रुपये, कौन सी खरीदोगे आप, दोनों आपको बहुत अच्छी लग रही है,
जो ज़्यादा अच्छी होगी वो तो कैसे,
दोनों इक्वली अच्छी लग रही है आपको, एक 6,000 की जो कि काट के 5,000 का डिस्काउंट है, एक 10,000 की शर्ट है जिसमें 4,700 डिस्काउंट 5,300 की मिल रही है, आपको दोनों बहुत पसंद आ रही है।
यूजुअली तो 5,300 वाली लोग खरीदते हैं,
मोस्टली लोग ही खरीदते हैं ना,
कि ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा महंगी टी शर्ट सस्ती मिल रही है,
आपने 300 रुपये ज़्यादा दिए रियलिटी के अंदर, मानते हो आप। तो इंडियन कस्टमर एग्जैक्टली ऐसे खरीदते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी, बंदा एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार बैठा है वो वैल्यू ढूंढ रहा होता है। आपने कभी देखा एयरपोर्ट पे लोग चॉकलेट खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, तो बंदा आता है उठाता है पहले प्राइस देखता है, फिर टर्न करता है देखते हैं कितने ग्राम है इसमें, 100 ग्राम है 200 ग्राम का पैकेट है, इंडियन ऐसे खरीदता है चॉकलेट, वो डिवाइड करता है दिमाग में, फिर देखते हैं पर ग्राम कितनी बढ़ रही है, वो पैकेट उठ रहा है। एक कोट है इंडिया का बहुत बड़ा ऐसा जो वैल्यू से, तो आप जो ब्रांड के लिए पूछ रहे थे, आपकी ब्रांड का अगर परसेप्शन ये नहीं बैठेगा ना कि मेरे को ये वैल्यू डिलीवर करती है, तो बहुत मुश्किल है कि आप मास ब्रांड बना पाओगे। मैं मास ब्रांड की अभी आंसर दे रहा हूँ, मैं उसका अलग आंसर दूंगा दूसरा लेकर। दूसरे टाइप का कोहोर्ट है जो कि आपकी एस्पिरेशन पूरी करती है, और एस्पिरेशन पूरी करने वाला भी वैल्यू फॉर मनी ढूंढता है। नाइकी के जूते खरीदने वाला भी सोचेगा डिस्काउंट पे आ जाए तो खरीद लो, ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी इज कॉमन, दैट इज इन योर डीएनए, विल नेवर चेंज, बट सम ब्रांड्स फुलफिल एस्पिरेशंस। तो आई थिंक इफ यू कैन बेसिकली यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आर द एस्पिरेशन एंड बिल्ड अराउंड थीम, ब्रांड थीम अराउंड दैट, तो आप नाइकी का अगर देखोगे तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला है सारे स्पोर्ट्स वाले पहनते हैं, भाग रहा है कोई कर रहा है, मतलब इट्स लाइक उनके सारे आर्ट में आपको यू नो स्पोर्ट्स पीपल दिखने वाले हैं। अब हम लोग नाइकी जो, हम तो स्पोर्ट पीपल नहीं बन रहे ना, बट वी रिलेट टू नो सुपर स्टार, वी रिलेट टू नो एथलेटिज्म, वी रिलेट टू नो एक्सेलेंस, एंड इट्स अ वे ऑफ शोइंग दैट
एस्पिरेशन
इज राइट, तो यू हैव गॉट दैट। आप भले ही यू नो आप भागते नहीं, पर आप कोई पूछेगा भागना चाहिए तो मना तो नहीं करोगे, एस्पायर टू गेट दैट। तो यू हैव गॉट रोल मॉडल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द ब्रांड, तो कहीं ना कहीं एस्पिरेशन टिकल करते हो आप। तीसरा टाइप का चीज़ होती है जहाँ पर आप इमोशन टिकल करते हो, जहाँ पर आप है ना बोलते हो कि ये ब्रांड है ना बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे वैल्यू सिस्टम, मेरे शेयर्ड बिलीफ सिस्टम इस ब्रांड में। मान लो आप अपने बच्चे को चाहते हो कि केमिकल ना लगे, तो कोई ब्रांड आएगी बोले कि मैं लाया हूँ एकदम ऑर्गेनिक जो आपके बच्चे को हार्म नहीं करे। आई रिलेट टू इट फॉर माई ओन गुड। तो यू हैव टू बेसिकली स्टार्ट पोजिशनिंग एंड थीमिंग योर ब्रांड विथ अ पर्पज, विथ अ स्टोरी एंड दीज पिलर्स अराउंड दैट टू क्रिएट द ऑडियंस दैट यू विल रिलेट। यू कॉन्ट रिलेट टू ऑल ऑडियंसिस इन वन गो एवर। तो प्लीज आइडेंटिफाई और यू नो पीपल यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, एट वॉट प्राइस पॉइंट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, एंड वॉट पर्पज एंड मिशन यू आर ट्राइंग टू डू, वॉट एस्पिरेशन यू आर ट्राइंग टू फुलफिल।
So when you answer all these questions, you find exactly what you're looking for. Interesting way. Wow. Very deep conversation. So many things to think about. Thank you so much for coming here. Thank you for giving so much time to us.
Pleasure.
Sahi, maine aapka bahut time le liya. But I think I got like a fair understanding of exactly like how you built, what you've built, what were your turning points and how you think about India and what are your responsibilities now. Now that you're transitioning into a new version of your life or the new space of your life. So all the best with Thank that you. As well. Let's just look forward to it. Thank you so much.
Looking forward.
ये सारे पॉडकास्ट बनाने में, ऐसे entrepreneurs को रीच आउट करने में, उनसे फिर ऐसी कहानियाँ निकालने में ना हमें बहुत मेहनत लगती है। एंड बड़ा बुरा लगता है जब आप लोग कोई इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो या कमेंट करके हमें बताते नहीं हो कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट अस नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कौन सी सी चीज़ें हैं जो बेकार लगी ताकि हम उसको रिपीट ना करें, और कौन सी सी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी ताकि हम उसे बार बार करते जाएं और इस चैनल के थ्रू हम इंडिया की बेस्ट एंटरप्रेन्योर स्टोरी इंडिया के हर एक कोने में पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद एटलीस्ट वन पर्सन जिसकी लाइफ इस कॉन्वर्जेशन से चेंज हो जा सकती है। एंड माई न्यू बुक बिल्ड डोंट टॉक इज आउट ऑन Amazon। इसमें वो हर चीज़ लिखी है जो मैंने कभी स्कूल में नहीं सीखी। निगोशिएशन कैसे करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, ब्रांड कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, यूट्यूब पे अपनी ब्रांड कैसे बनाए, हर वो चीज़ के बारे में जो हमें स्कूल में मॉडर्न डे लाइफ के बारे में नहीं सिखाया जाता है। आई हैव रिटन दैट इन दिस बुक। गो चेक आउट एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम कीप फिगरिंग आउट।